माधव कुंज बिहारी
बलदेव सुभद्रा माई की श्री सुदर्शन चक्र जी महाराज की श्रील प्रभुपाद की ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा
कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
कृष्णा कृष्णा हरे हरे
हरे रामा हरे रामा
हरे रामा हरे रामा
राम रामा हरे हरे
राम रामा हरे हरे
हरे कृष्णा। जनसामान्य के निर्देश के अनुसार हम हिंदी में बात करेंगे, ठीक है ना सबको? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, कृतज्ञ हूँ आपके लिए, सबके लिए आभारी हूँ कि आपने हमें अबूधाबी में निमंत्रण दिया और भगवान की असीम कृपा से हम अबूधाबी में बैठे हुए हैं आपके सामने। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, थैंक यू वेरी मच। ये मनुष्य जीवन जो है बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि इस जीवन में भगवान ने हमें इतनी सारी सुविधाएं दी जो जानवरों को नहीं दी है, पंछियों को नहीं दी है, मछलियों को नहीं दिया है, कीटकों को नहीं दिया, पेड़ों को नहीं दिया है। मनुष्य जीवन में इतनी सुविधाएं दी और इन सारी सुविधाओं के साथ में हमारा जीवन हम बहुत श्रेष्ठ बना सकते हैं। जैसे ये गायन जो है वो पंछी लोग नहीं कर सकते, माने इंसान गा सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं, कविता लिख सकते हैं और क्या क्या करते हैं, भोजन बना सकते हैं, अलग अलग टाइप का ड्रिंक्स बना सकते हैं। इतनी सारी 5-star सुविधाएं भगवान ने हमको दी है, लेकिन ये सुविधाएं भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो उन्होंने दिया है। किंतु बाय द वे जब भी किसी अमीर घर में आपकी शादी होती है तो आपको बाय द वे अच्छा खाना, अच्छा रहना सब मिल जाता है। वैसे ह्यूमन बीइंग को भगवान ने सारा दे ही दिया वैसे, लेकिन जो विशेष उपहार दिया है भगवान ने वो है उनको जानने का मौका, दी अपॉर्चुनिटी टू नो हिम, टू कनेक्ट विथ हिम, टू बी लिंक्ड विथ हिम। ये सुविधा इतनी मूल्यवान है, इतनी कीमती है, इसके सामने बाकी सारी सुविधा भी इतनी इम्पोर्टेंट लगती नहीं। दी अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय इन अ वेरी 5-star वे, उसके सामने उनको मिलने का मौका, उनके साथ जुड़ने का मौका जो मिला हुआ है वो सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, सबसे बड़ा वरदान है। इसीलिए जो मनुष्य बनने के बाद में इस सुविधा का लाभ नहीं लेता है उसको दुर्भाग्य कहा जाता है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। इतनी सारी सुविधा प्राप्त करने के बाद वो सुविधाओं को एंजॉय करने में ही लगा रहता है वो, और उसके वजह से दुख भोगता है। कल मैं अच्छा एक आर्टिकल पढ़ रहा था प्रभुपाद जी का, तो उसमें वो लिखते हैं कि प्लानिंग टू एंजॉय इज प्लानिंग टू स्टार्ट सफरिंग। और भौतिक दुनिया जो होती ना उसका बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है, यस एंजॉय, एंजॉय ऑल द रिसोर्सेस, जितना भी हमारे पास सुविधा मिल रही है, जो भी मिल रहा है उसको एंजॉय करना चाहिए। और इसी का प्लानिंग होता है, इसी का चिंतन होता है, इसी की योजना बनती है, इसके लिए शक्ति खर्च की जाती है, इसके लिए समय खर्च किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इतना सारा दिमाग लगा के योजना बनाने के बाद भी हाथ में केवल मिजरी आती है, एंड रिजल्ट। आप चाहते हैं आनंद, जैसे कि आप गाय का दूध निकाल रहे हैं और आपको लगता है कि दूध गिरना चाहिए पॉट में और काउडंग गिर जाता है तो कैसे रहेगा? यू हैव एवरी प्लान, सब कुछ आपने किया है कि दूध ही गिरना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से काउडंग गिर रहा है उसके अंदर, या तो काउ यूरिन गिर रहा है उसके अंदर। उसी तरह से होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये करने से ये आनंद मिलना चाहिए, लेकिन एग्जैक्टली एंड में वो मिलते 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 क्या होता है पता नहीं उसका, इट टर्न्स इनटू मिजरी। तो भी हमारी हमारा एक फार्म है मुंबई में, उधर एक शादी हुई, दो डिवोटीज की शादी हुई, तो उसमें एक डिवोटी उनके चाचा थे, वो कंपेयरिंग कर रहे थे उनको, लोगों को जरा बता रहे थे क्या है, तो बोल रहे थे, मुझे इतना हंसी आया उस समय, बीच में डांस वगैरह प्रोग्राम था वो सब बीच में, अच्छा बढ़िया सा कार्यक्रम था, डिवोशनल डांसेस उसमें, वो बीच में बोल रहे थे बीच में कि सबसे पहले हम लोग एंगेजमेंट रिंग पहनते, और आजकल ऐसे रिंग आते हैं ना कि उसमें वेडिंग रिंग फिट करने का इंतजाम होता है, इट इज लाइक दिस एंड देन वेडिंग रिंग गोज एंड फिट्स इन दैट एंड दे टू बिकम वन रिंग, लाइक दैट अरेंजमेंट इज देयर। तो मुझे पता नहीं था, पहली बार मालूम पड़ा। तो ये दुल्हन ने वो वेडिंग के पहले एंगेजमेंट रिंग उसको पहनाया गया था, उसी में जाकर फिर वेडिंग रिंग फिट किया गया। तो बोलते हैं पहले होता है, वो बता रहे थे, फर्स्ट देयर इज एंगेजमेंट रिंग, देन देयर इज वेडिंग रिंग, एंड देयर फॉर लाइफ टाइम देयर इज सफरिंग, इट इज दोनों रिंग जब पहनते हैं तो केवल खुशियों की अपेक्षा होती है कि खुशियां ही खुशियां मिलेगी, लेकिन एक्चुअली व्हाट बिगिंस इज मिजरी सफरिंग। और ये केवल वेडिंग का हिसाब किताब नहीं है, सब चीज का यही हिसाब है। आप एजुकेशन बहुत प्राप्त करते हो सोच करके को आनंद मिलेगा लाइफ में, लेकिन वो भी तकलीफ का कारण बनता है इन द कोर्स ऑफ टाइम। हाँ, शुरुआत में तो बहुत आनंद आता है उसके अंदर। भोजन भी आप करेंगे, बहुत बढ़िया भोजन करेंगे, और ज्यादा खाएंगे तो सफरिंग बिगिंस, है ना? कुछ भी करो आप, इट इज सेड दैट इस दुनिया में आनंद होता है ना, आनंद वो केवल आनंद मिलने वाला है इस विचार में आनंद होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में बोलते हैं कि हैप्पीनेस इन ओनली इज इन एंटिसिपेशन ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस, बट व्हेन एक्चुअली इट हैपेंस देन इट इज नो मोर हैप्पीनेस। इसलिए कहते हैं कि जब शादी होती तय होती ना, तय फिक्स होती ना, तो शादी फिक्स होने से शादी होने तक जो आनंद होता है ना, वो बाद में कभी भी नहीं होता है। फैक्ट कि मेरी शादी हो रही है या मुझे नए घर में जा रहा हूं या मैं अभी नई साउंड सिस्टम खरीद रहा हूं या नई गाड़ी आने वाली है, दिवाली के मुहूर्त पे आएगी, बुक कर दिया है, या नया फ्लैट ले लिया है, अभी मैं दिवाली में एंट्री करने वाला हूं, ये जो है ना एंटिसिपेटरी, अभी होने वाला है वो, जब तय हुआ है और जब होने वाला है तब तक जो टाइम है ना उसमें ही वो आनंद का थोड़ा बहुत अनुभव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं आभास। आभास यानी व्हाट इज हिंदी वर्ड फॉर दैट, इंग्लिश वर्ड फॉर दैट, हाँ, इट्स लाइक इट इज नॉट अ ट्रू हैप्पीनेस बट इट्स लाइक फीलिंग दैट इट विल कम, एंटिसिपेशन। और यही मटेरियल लाइफ का, आप आगे बैठे सब लोग आगे आ जाए, यही मटेरियल लाइफ का एक फॉर्मूला है। द रियलिटी ऑफ लाइफ इज दिस ओनली, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जीसस क्राइस्ट बाइबल में बोलते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, बहुत आचार्यों ने भी कहा है लेकिन बेसिकली जीसस क्राइस्ट बाइबल में बताते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, रियली वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, देन व्हाट यू शुड डू, स्टॉप लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। अमेजिंग आंसर ना, ओनली अ ग्रेट आचार्य, ग्रेट ग्रेट गुरु, ग्रेट मैसेंजर मसीहा कैन गिव सच आंसर। हम लोग कुछ ऐसा कुछ अलग फॉर्मूला निकालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 सेवन पॉइंट एजेंडा ऑफ हैप्पीनेस, सेवन वेज टू बिकम हैप्पी, सेवन वेज टू ईट गुड फूड, सेवन वेज टू विन गर्ल्स हार्ट, सेवन वेज टू बी हैप्पी इन मैरिड लाइफ, वो सब। बट जीसस क्राइस्ट एकदम अलग बोलते हैं कुछ, वो कहते हैं कि यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, स्टॉप ट्राइंग टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में आनंद होने का प्रयास करना ही छोड़ दो,
क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने लिखा है यहाँ पर, जिसने दुनिया बनाया है उसने मैनुअल भी दिया है, उसमें लिखा है माम उपत्यंत कौन्तेय दुखालय अशाश्वतम। ये दुनिया मैंने ऐसा बनाया है कि इसमें सब कुछ टेम्पररी है नंबर वन, और केवल दुख ही दुख भरा हुआ है इसके अंदर। सारा फॉर्मूला जितने भी बनाओगे आप, उसका एंड दुख में होता है, गारंटीड है वो। आप कुछ भी करो, बिकम मिलियनियर, बिकम मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी और मैन इन द वर्ल्ड, मोस्ट हाईली एजुकेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड, जो भी कुछ बनेंगे आप, एंड रिजल्ट जो है ना वो फिक्स है। आप कहीं से भी किधर से घूम के जाओ, एंड रिजल्ट फिक्स है। तो ऐसे स्थिति में एक ही रास्ता है खुशियां प्राप्त करने के लिए, जो हम चाहते हैं सब लोग। हम सब लोग चाहते हैं खुशियां, और खुशियां चाहने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि हमारा नेचर है, इट्स अवर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर टू बी हैप्पी, टू लुक फॉर हैप्पीनेस। तो सुख को ढूंढना कोई पाप नहीं है, लेकिन सुख को गलत जगह ढूंढना गलत है। निश्चित है ना, सुख को गलत जगह ढूंढना। अभी आपको उसमें लकड़ी का फर्नीचर खरीदना है, पर हॉस्पिटल जाएंगे आप, कॉर्निश हॉस्पिटल, टू वॉन्ट टू बाय फर्नीचर, तो मिलेगा क्या आपको उधर वो? या तो फर्नीचर की दुकान में जाके आपको समझो टाइफॉइड का दवा इलाज चाहिए, इलाज करना है, तो इलाज हो सके होगा क्या उधर? नहीं होगा ना। इलाज होने की जगह दुनिया में है, लेकिन रॉन्ग जगह जाएंगे तो कैसा इलाज होगा आपका? वो फर्नीचर मिलने की भी जगह दुनिया में है, लेकिन हॉस्पिटल जाएंगे तो फर्नीचर कैसे मिलेगा? वही हम लोग वही कर रहे हैं सब लोग। हम लोग वो चीज जो हमको चाहिए वो गलत जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए बार बार ठोकरे खाते रहते हैं। ये सफरिंग क्यों आता है? ओनली बिकॉज ट्राइंग टू सर्च हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग वे, दिस इज द रीजन बिहाइंड। तो अगर सच में आनंद आपको चाहिए तो आनंद केवल एक ही जगह पर है, वो है भगवान के चरणों में, द सुप्रीम लॉर्ड। उनके चरणों में जो आनंद है वो और किधर भी नहीं है। और उनको अगर मुलाकात आपकी नहीं हुई है, भगवान से अभी तक भेंट नहीं हुई है, तो भगवान के जो भक्त हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो उसी आनंद का अनुभव करते हैं, और वो आनंद जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। इस दुनिया के सुख जैसा टेम्पररी नहीं होता है, दुनिया का सारा सुख टेम्पररी है। किसी भी सुख को ले लो, कोई भी सुख ले लो, आप नए घर पे आए समझो इधर आए, या नया जॉब मिला आपको, थ्रिल रहेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद उसी में आपको फिर तकलीफ शुरू हो जाएगी। आप नया गाड़ी लो, कुछ दिन बहुत खुशी रहेगी आपको, बहुत मजा आएगा, आप एकदम बहुत केयरफुली बैठेंगे, केयरफुली गाड़ी के बारे में सोचते रहेंगे, तो आगे वही गाड़ी लगता है कि क्या आ रही, नई गाड़ी लेना चाहिए। तो ये फाइव स्टार खाना खाया, रोज फाइव स्टार खाना खाया समझो, फॉर एग्जाम्पल आप बड़े एग्जीक्यूटिव हो, रोज फाइव स्टार खाना खा रहे हैं, बाद में लगता है कि दाल रोटी खाना चाहिए, बहुत हो गया, तो सलाद भी खाना चाहिए, झाड़ पाला भी खाना चाहिए। एवरीथिंग यू नीड अ ब्रेक। अगर फाइव स्टार खा रहे हो तो आपको लगता है कि कुछ सलाड भी खाना चाहिए, और रोज सलाड और सूखी रोटी खा रहा है तो लगता है फाइव स्टार खाना चाहिए। मतलब कुछ भी करो आप, आपको ब्रेक चाहिए, ऐसा है लाइफ है। और उसमें जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, कितना भी कोशिश करो जीव संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का स्वभाव है कंटिन्यूअस आनंद का अनुभव करना। उसको जो भी चाहिए वो लॉन्ग टर्म चाहिए, नॉट शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में वो संतुष्टि प्राप्त कर ही सकता नहीं। जैसे आप नदी से मछली को लेकर आएंगे और उसको सेंटेड वाटर में लाइट लगा के, ऑक्सीजन का मशीन लगा के, और कीड़ा छोड़ रहे बीच में बीच में, फिर भी उसको आनंद नहीं आएगा। जब तक वो अपने स्वभाव वाली जगह पर नहीं पहुंचेगा, जो उसका स्वभाव है, इट्स कॉल्ड एज हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, जिसका जहां पर उसका स्वभावतः रहने की जगह है उसकी, वहां जब तक नहीं पहुंचेगा वो, जैसे कि जब तक वो मछली नदी के जल में या समुद्र के जल में नहीं पहुंचेगी, तब तक आप उसको कुछ भी दे दो, लाइट लगा दो, क्या क्या करो उसके लिए, कांच का वो हीरे डायमंड लगा दो उसके ऊपर भी, उसको खुशी नहीं मिलेगी। आपका स्वभाव जहां पर है वहां पर आप जब पहुंचोगे तब आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस का अनुभव होगा। इसलिए हमारे भगवान बार बार आते हैं दुनिया में हमको याद दिलाने के लिए। जब कभी खुद नहीं आते हैं तो फिर अपने मैसेंजर को भेज देते हैं, और वो खुद भी वही बोलते हैं जो उनका मैसेंजर बोलता है। जितने मैसेंजर आए हैं भगवान के धाम से, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के घर से जितने आए हैं, वो सब लोग एक ही भाषा बोलते हैं। वो कौन सी भाषा है? प्रेम की भाषा, लैंग्वेज ऑफ लव, लैंग्वेज ऑफ हार्ट। जो इस दुनिया में बहुत कम लोग बोलते हैं। यहाँ पर दुनिया के लोग लैंग्वेज ऑफ बॉडी, लैंग्वेज ऑफ माइंड, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, लैंग्वेज ऑफ मनी, लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टीज, लैंग्वेज ऑफ फेम, इसकी बातें करते हैं। जिस इतनी सारी भाषाएं हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें से एक में भी आनंद का आविर्भाव नहीं है। देयर इज नो मैनिफेस्टेशन ऑफ हैप्पीनेस इन एनी ऑफ दिस लैंग्वेजेस। सब भूल भुलैया है, लगता है बहुत सारा कुछ है इसके अंदर, मिलेगा, लेकिन ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिलता है, बाद में तो परेशान हो जाते हैं। सबको लगता है कि सब तकलीफ की जड़ जो है वो पैसा है, पैसा होना चाहिए। सब तकलीफ की जड़ जो है, क्योंकि पैसा नहीं है इसलिए तकलीफ है। ये दुनिया में कितने पैसे वाले लोग हैं जो दुख भोग रहे हैं, है ना? आपने देखा ना माइकल जैक्सन का डेथ कैसे हुआ, कितना पैसा है उसके पास, बाप रे, हम लोग तो गिन भी सकते नहीं कि कितना जीरो है उसके ऊपर, इतना प्रॉपर्टी, इतना पूरा आइलैंड के ऊपर अकेला आदमी रहता है वो, और क्या क्या फैसिलिटी उसके पास, बाप रे, लेकिन कैसी मौत हुई उसकी। एक गरीब इंडिया का भिखारी भी इससे अच्छी मौत मरता है, और इतना संपत्ति, धन संपत्ति होने के बाद में। आज ऐसे पेपर में मैंने पढ़ा कि माइकल जैक्सन एक ऐसा व्यक्ति है कि जो मरने के बाद भी अभी तक टॉप फेम पे है, मतलब पॉपुलैरिटी में टॉप में, अभी भी उसके ऊपर पता नहीं कौन कमा रहा है उसके पैसे है। लेकिन चल रहा है उसका टॉप रैंकिंग, सेलिंग एल्बम, सब कुछ अभी टॉप रैंकिंग पे। जनरली डेथ के बाद में वो होता नहीं, लेकिन माइकल जैक्सन इज वन ऑफ दोस पीपल। बट क्या करना है उस फेम का, माइकल जैक्सन खुद को क्या मिला उसका, उसके लिए वो तो ड्रग लेके तड़प तड़प के ही मरा ना, वो एमेशिएटेड, लॉस सो मच ऑफ सफरिंग वाज देयर। तो दुनिया उसके नाम पे बहुत हल्ला गुल्ला मचा रही है, लेकिन उसका क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हिम? उसको जाके मिलो, आर यू हैप्पी? वाज मोस्ट मिजरेबल, हिज पीपल ओनली किल्ड हिम ओवरडोजिंग। ऐसे कितने लोग हैं, और एक मैं सबका नाम नहीं लूंगा, लेकिन ऐसा ही बिलियनियर था, वर्ल्ड में रिचेस्ट मैन था, वो एक दिन गाड़ी चला रहा था, इंडिया में गाड़ी चला रहा था, तो रोड पे रुक गया वो सडनली, समुद्र के पास, हाजी अली के पास रुक गया वो, और ड्राइवर को बोला रुक लो जरा, मैं आता हूँ 2 मिनट में। बिलियनियर है, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि उसको क्या चाहिए ऐसा ऐसा करेगा तो आ जाएगा चीज, व्हाटएवर ही वांट्स, ही वांट्स टू ईट, ही वांट्स टू डू व्हाटएवर ही वांट्स, सारी खुशियां उसके दरवाजे पे खड़ी है, मतलब खुशियां नहीं, खुशियों के साधन, रिसोर्सेस ऑफ सो कॉल्ड हैप्पीनेस, जो समझता है ये रिसोर्स हैप्पीनेस का है, ऐसे सारे रिसोर्सेस उसके पास अवेलेबल है। तो वो रोड पे उतरता है और फुटपाथ पे कुछ समय चलता है, वही जगह खड़ा रहता है ऐसा। तो ड्राइवर सोच रहे हैं क्या कर रहा है साहब मेरा, तो खड़ा है ऐसा, क्या देख रहा है, एक भिखारी बैठा है, पता नहीं कितने दिन नहाया नहीं होगा वो, और कपड़े भी ऐसे गंदे, उसके कपड़े आधे है नहीं, आधे है नहीं है, और वो वड़ा पाव खा रहा है, सब खा रहा है चाव से, नीचे दोचार रखे हाथ में, दोचार खा रहे, लगता है कई दिन का भूखा रहेगा वो, और साहब उसको देख रहे हैं, उसके आंखों से आंसू आ रहे, क्यों? क्योंकि साहब को इसोफेजियल कैंसर है, वो लिक्विड के सिना बिना कुछ खा नहीं सकता। उसके बाद दुनिया भर की 50 प्रकार के मेथड्स, मतलब आइटम्स, इटालियन, इंग्लैंड, इंडिया, पंजाबी, साउथ इंडियन, हर प्रकार का पॉसिबिलिटी उसको है, अगर चाहता है तो खा सकता है वो, लेकिन वो रोज दाल चावल जो भी मिक्स करके उसका लिक्विड बनाता है और ट्यूब से खाता है। वो कह रहा है कि क्या फायदा मेरे पैसे का, मैं सोच रहा हूँ पैसा है तो मैं सब कुछ दुनिया में खरीद सकता हूँ, लेकिन ये भिखारी जो वड़ा पाव खाने में उसको आनंद हो रहा है, वो मुझे मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा के भी मैं ये आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, इमेजिन। इसलिए वो रो रहा था। अभी आप स्टीव जॉब्स का लेटर पढ़वाओ, उसने भी लेटर लिखा है कि लाइफ में अल्टीमेटली मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ जो हर आदमी चाहता है वो सब मैंने किया, लेकिन फाइनली मेरे हाथ में क्या है, इतना पैसा है मेरे पास लेकिन मैं अपना इलाज नहीं कर सकता, मेरे सामने मौत खड़ी है और मैं मौत के मुंह में धीरे धीरे जा रहा हूं, और तब सोच रहा हूं कि मैंने क्या एक्चुअली कमाया। तो लिखता है कि आप लोग ऐसी गलती मत करना, इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स, स्पेंड टाइम विथ योर बिलेवेड्स,
गिव देम लव, लव इज एवरीथिंग, लव के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ झूठ है, बाकी जो भी आपने इकट्ठा किया हुआ है आपके काम नहीं आने वाला है, आपको दिल में शांति नहीं देने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। वो लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, और जनरली ऐसा कहते हैं कि डेथ बेड पे आदमी जो भी बोलता है ना वो दिल की बात बोलता है, डेथ बेड पे वो अभी आदमी नाटकबाजी नहीं कर सकता है, डेथ बेड पे बैठ के उसको जो रियल जो अंदर की फीलिंग है ना वो ही बोल सकता है। और कई बार ये व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हुआ है स्टीव जॉब्स का, और आज भी स्टीव जॉब्स के बारे में लोग बहुत आदर रखते हैं और बहुत लोग उसको प्रेम भी करते हैं, एक लोगों का आइडल है वो। लेकिन वो आइडल जो है वो क्या बोल रहे हैं एंड में, आपको पते की बात बता रहा है वो, कि आप लोग भी ऐसे भागो मत भूल भुलैया के पीछे, कुछ नहीं हाथ लगने वाले आपके। और ये सब स्थितियों को जब हम समझते हैं ना तो कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है ना वो एक्चुअल अपना काम शुरू कर रही है। बुद्धि उसका रियल काम ये है कि आपको समझाएं कि इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है। जब बुद्धि के आधार पर सब देख रहे हैं आप और समझ रहे हैं कि इस दुनिया में कोई हैप्पीनेस नहीं है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ योर हैप्पीनेस, व्हेन यू नो देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, वो आपके आनंद की शुरुआत है। स्टेप वन टू अंडरस्टैंड देयर इज नो हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। स्टेप टू, हैप्पीनेस इज देयर ओनली विद गॉड, ये दूसरा कदम है। और जब हम हमारा कनेक्शन भगवान से करने लगते हैं करते हैं तो हमारे एक्चुअल हैप्पीनेस का अनुभव शुरू हो जाता है। द बिगिनिंग ऑफ एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस इज फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स, और उसके बाद में इतनी हैप्पीनेस है कि उसका अंत ही नहीं है, अनलिमिटेड ब्लिस इन ह्यूमन लाइफ। तो हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना तड़प रहे हैं, क्यों इतना फर फोड़ रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं इतना दिन रात? सब बेसिक हैप्पीनेस भी जो है ना वो पत्नी के साथ बैठना, बच्चों के साथ बैठना, थोड़ा बैडमिंटन खेलना, थोड़ा गार्डन में दौड़ना उनके पीछे, थोड़ा हगे हगे किसी किसी करना बच्चों को, टाइम ही नहीं है। और मेरे उनके लिए ही कर रहा हूँ सब कुछ मैं। वो बोलते हैं पापा आई वॉन्ट यू, आई डोंट वॉन्ट योर मनी। एक लड़के ने पापा को लेटर लिखा, पापा आपका 6 to 9 PM में आप कितना पैसा कमाते हो? तो पापा ने को जवाब दिया कि मे बी फ्यू हंड्रेड डॉलर्स, आई डोंट नो हाउ मेनी इट इज, बट बिग अमाउंट। तो बेटे ने बोला पापा आई वॉन्ट टू सेव फ्रॉम माई पॉकेट मनी दैट मच मनी विच यू अर्न बिटवीन 6 PM and 9 PM एंड आई विल गिव यू दैट मनी एंड यू स्पेंड दैट मच टाइम विद मी। पढ़ के रोना आया उन्होंने क्या, क्योंकि बच्चा बोल रहा है कि आई वॉन्ट यू पापा, आई डोंट वॉन्ट योर मनी, आई वॉन्ट यू। और जब बच्चा पापा को चाहता है मेरे साथ में रहे और पापा उस समय टाइम दे नहीं पाते, तो जब पापा को टाइम चाहिए होता है तब बच्चा वो दे नहीं पाता है, क्योंकि तो जो पापा ने दिया है वही पापा को बाद में मिलेगा। वॉट एवर यू गिव यू गेट बैक, वॉट एवर यू सो यू विल रीप। जो आपने नहीं दिया है वो आपको भी नहीं मिलेगा, अगर वो आपने दिया है तो आपको मिलेगा। इतना सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई बड़ा कॉम्प्लिकेट फॉर्मूला है क्या? अगर आपने प्रेम दिया है तो आपको प्रेम मिलेगा, अगर आपने फ्रेंडशिप दिया है आपको फ्रेंडशिप मिलेगा, आपने अगर केयर किसका किया है तो आपको केयर मिलेगा, किसी को सहारा दिया है तो आपको सहारा मिलेगा। सच्चा सिंपल फॉर्मूला। तो ये हमारी जिंदगी का फॉर्मूला है, जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ देते हैं और फिर उस संबंध में आनंद का अनुभव करते हैं, प्रेम का अनुभव करते हैं, तो फिर वो ऐसा प्रेम है ना कि वो आप दूसरे को दिए बिना रोक नहीं सकते। समझो आपको $1 million का लॉटरी लग गया, समझो तो आप ना किसी को बोलोगे नहीं, चुपचाप रहोगे, है ना? जनरली देखो, समझो आपको को लगा कि 1 Mercedes कार आपको मिल गया लॉटरी में, कहीं कहीं क्या बोलते हैं बम्पर, क्या जैकपॉट खुल गया आपका और आपको गाड़ी मिल गई, तो आप किसी को बताएंगे नहीं कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप बताएंगे लोगों का एनवी आपके ऊपर आएगा, एवरीबडी विल बी एनवियस फॉर यू, क्या हो यू गॉट, हाउ आई डिड गेट, तो आप इसलिए किसी को बोलोगे नहीं। लेकिन जब ये खुशी आपको मिलेगी ना भगवान के संबंध वाली,
तो आप चुप रह सकते नहीं है, और वो देने के बाद लोगों को बांटने के बाद लोगों का एनवी भी नहीं होगा आपके ऊपर। पीपल विल बी हैप्पी टू रिसीव दैट कनेक्शन विद यू ऑल्सो। इतना अद्भुत मार्ग है ये भगवान का, और हमारे भगवान के दयालु हुए। एक तो खुद आते हैं या तो अपने मैसेंजर को भेजते हैं, बार बार हमको प्रेम देने का कोशिश करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि हम उनको प्रेम देंगे भगवान को, तो भगवान हमको प्रेम देंगे। उनके बारे में ऐसा नहीं है, वो पहले हमको प्रेम देते हैं। फर्स्ट ही गिव्स दैट लव टू यू, और हमको खाली रेसिप्रोकेट करना है, खाली रिसीव रिसीव करते रहना नहीं, रेसिप्रोकेट भी करना है उनके लिए सेवा के माध्यम से। तो वो भगवान रिपीटेडली दुनिया में आते हैं, कॉन्स्टेंटली कीप्स कमिंग। क्यों आते हैं बताएं आपको? वो आप लोगों को, हम लोगों को उनके घर पे बुलाना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि इतने सारे मेरे बच्चे लोग यहाँ पर रहते हैं, इतना क्यों तड़प रहे यहाँ पर, क्या जरूरत है, घर लौट के आओ, मेरे घर पे आ जाओ वापस, सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। क्यों यहाँ पर धक्के खाना है आपको, क्यों सर फोड़ना है बार बार, क्यों बार बार दुख का अनुभव करना है, जन्म जन्मांतर के बाद, लाइफ आफ्टर लाइफ, इतना क्यों तड़पना है यहाँ पर, छोड़ दो सब कुछ, आ जाओ मेरे पास, मैं कुछ भी बुरा नहीं मानूंगा कि आप मुझे छोड़ के चले गए थे और ये ऐसा किया था, सब कुछ भूल जाऊंगा मैं, गले लगाऊंगा आपको और खुशियां ही खुशियां बांटूंगा सारा। जैसे कि कोई बच्चा घर छोड़ के जाता है गुस्सा करके, झगड़ा करके जाता है, पापा आपके घर पे कभी रहूंगा नहीं मैं, एक पानी भी नहीं पीऊंगा आपके घर का मैं, फिर भी कुछ देर के बाद पापा क्या करते हैं, अंकल को भेजते हैं, जरा देखो किधर क्या करता है, बोलते हैं हाँ अंकल, जाके मिलके बोलते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 दादर पे वो बूट पॉलिश कर रहे हैं, तो बोलता है कि जाओ उसको बोल रहे हैं, मैं कुछ मन में रखता नहीं हूँ, तो आ जा घर पे, क्यों तड़प रहे हो, बूट पॉलिश करके 5-5 रुपये कमाते हो, सब तुम्हारा ही है, इतना प्रॉपर्टी घर सब तुम्हारा है, आ जाओ, फिर भी वो नहीं आता, फिर दूसरे को किसको भेजते हैं, एक बार खुद आ जाते हैं, बोलते हैं बेटा भूल जाओ सब, मैंने कुछ याद नहीं रखा है, आप भी आ जाओ, भूल जाओ सब कुछ, तो गले लगा के घर पे लेके आते हैं, फिर नो बूट पॉलिश करने की जरूरत नहीं, खाना पीना सब तैयार है, एवरीथिंग इज रेडी, नो नीड टू स्ट्रगल। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि आप मुझे छोड़ के चले गए थे, यहाँ पर तड़प रहे हो, धक्का खा रहे हो, कोई बात नहीं, आई फॉरगेट एवरीथिंग, यू कम बैक। क्या लिखा है स्क्रिप्चर में? द मीक एंड द हम्बल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। जो नम्र होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का किंगडम, धाम जो है ना, वो उनका होता है, क्योंकि वो भगवान का जो है वही उसके बच्चे का है, भगवान के बालक का है ना। तो वो जो अपना घर है उसका एडवर्टाइज करने के लिए वो यहाँ पर बार बार आते हैं, तो क्यों यहाँ पर दुख भोग रहे हो, मेरे घर पे आ जाओ, आनंद से रहो, प्रेम से रहो, कोई जन्म लेने की, मरने की, बीमार पड़ने की, बुढ़ा होने की कोई जरूरत ही नहीं है। बार बार जन्म ले लो, बार बार मरो, बार बार दुख भोगो, बार बार डिसीज, क्या जरूरत है सब इतना चक्र काटने की, आराम से रहो, ना जन्म होगा, ना मृत्यु होगी, ना बुढ़ापा होगा, ना बीमारी होगी, ना कोई तकलीफ देगा आपको, ना कोई मलेरिया होगा, ना कोई टाइफाइड होगा, आराम से रहो, मस्त रहो, एंजॉय। हम बोलते थोड़ा टाइम नहीं है अभी, थोड़ा बाद में आता हूँ, अभी मेरे बच्चे को स्कूल पढ़ाने का है, अभी मेरे को ये करना है, अभी मेरे को घर बनाना है, मेरा लोन बाकी है, किधर आ जाओ तुम्हारे घर पर अभी मैं तो वह दोबारा आते हैं, दोबारा बोलते हैं आ जाओ अभी, अभी तो हो गया ना, अभी नहीं, अभी शादी करना है उसका, अभी तो उसका तो सेटल करना है, उसको भी बच्चा होगा तो कौन देखेगा उसको, ऐसे हम लोग पोस्टपोन करते रहते हैं। लेकिन वो थकते नहीं है, वो बार बार आते रहते हैं, शुरू में भी आते हैं, बीच में भी आते हैं, बाद में बीच में भी आते हैं, बाद में एंड में भी आते हैं, लास्ट एंड में भी आते हैं, बोलते अभी तो आ जा, अभी तो मैं थक गया, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इतना जोर में दुख रहा है, इधर कैंसर हो गया, 4th स्टेज में हो गई, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है, इतना तकलीफ हो रही है, इतना कष्ट हो रहा है। तो मर जाने के बाद अगले जन्म में भी आते हैं वापस बुलाने के लिए, आओगे ना अभी, बोला अभी तो मैं बच्चा हूँ, बहुत सारा करना है काम, ऐसे ही जिंदगी भर चलते रहते हैं। तो भगवान जो है ना फिर यहाँ पर आकर कुछ समय रहते हैं और लीला भी करते हैं, मतलब अपना पास टाइम भी दिखाते हैं, ताकि लोग आंखों देखकर हाल देख सकते हैं कि क्या एक्चुअली वहां पर क्या हो रहा है, जो आप लोगों को अच्छा लगेगा वहां पर कैसा क्या हो रहा है, जो दिल को लुभाएगा, दर्द दर्द दुख दर्द मिटा देगा, टेंशन खत्म कर देगा, आनंद का अनुभव देगा, दिल को परिपूर्णता यानी परफेक्शन का एक्सपीरियंस देगा, इसलिए वो आते हैं। और अपना धाम यानी अपना जो होली प्लेस जो है उसका अंदर क्या चल रहा है उन लोगों को दिखाते हैं, उसी को हम श्री वृंदावन धाम कहते हैं। अभी मैं मुंबई से आया इधर, है ना, मेरा फ्लैट यहाँ पर लेके आया क्या, मैं मेरा बाथरूम मेरा बेडरूम मेरा फैसिलिटीज घर का इधर लेके आया क्या? नहीं, आपका जो बाथरूम है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हो सकता है मेरे से अच्छा होगा, उसे मेरे से कमजोर भी होगा, जो भी होगा, लेकिन जो आपका है जो भी है मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप जो बिस्तर देंगे उसमें सोना पड़ेगा, है ना। लेकिन भगवान जब आते हैं ना अपना घर ही लेके आते हैं इधर, वो केवल भगवान कर सकते हैं, अपन नहीं कर सकते। उनको जेट लैग विटलैग कुछ होता नहीं, वो अपना धाम ही लेकर आते हैं पूरा। जैसे बोले भगवान को, जब पृथ्वी देवी बोल रही थी कि अभी बहुत कष्ट हो रहे हैं मुझे, ये कंस ने बहुत बड़ा आतंक बना के रखा है, लॉट ऑफ एट्रोसिटीज आर गोइंग ऑन, मैं बहुत दुखी हूँ भगवान, मुझे कुछ करो, भगवान ने कहा डोंट वरी, मैं आ रहा हूँ अभी, मैं अवतार लेकर आता हूँ और सब प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा आपका, टेंशन मत लो, आप जाओ आराम से, अभी मैं आ रहा हूँ। तो ये जब अनाउंस कर रहे हैं ना, तो राधा रानी भी खड़ी है उधर बाजू में, तो बेहोश होकर गिर जाती है, तो लोगों भगवान को आश्चर्य होता है, तो सखियां उनको आके जगाती हैं, राधा रानी क्या हो गया, आप बेहोश क्यों हो गए? तो उसने बोला भगवान आपने तो अनाउंसमेंट किया ना कि आप जा रहे हो, तो मुझे दुख हुआ कि आप मुझे छोड़ के जाओगे, कष्ट होगा मुझे, पर नहीं मैं तो आपको साथ जाने का प्लानिंग किया है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं नहीं आ सकती, क्योंकि जहां वृंदावन नहीं रहेगा वहां पर मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं तो वृंदावन में ही रहूंगा, आपके साथ में रहना है। तो बोले मैं जानता हूँ आपके हार्ट में क्या है, इसलिए अनाउंस करने के पहले ही मैंने मेरे घर का कुछ हिस्सा अर्थ पे भेज दिया, ऑलरेडी वृंदावन धाम को अर्थ पे भेज दिया है, और पता है क्या क्या भेजा है, आपका बिलवेड गोवर्धन को भी भेज दिया है, आपकी बिलवेड यमुना जी को भी भेज दिया है। हाँ, तो बोले कि वृंदावन गोवर्धन और यमुना, इस तीन चीज के बिना मैं रह नहीं सकती, मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए मैंने पहले से ये तीन चीज को अर्थ पे भेज दिया है, सारा सेटिंग रेडी है। तब वो बोली खुश, यस आऊंगी। फिर भी बोली कि मेरी एक कंडीशन है आने के लिए, वो सबसे पहले मैं आपको देखूंगी, किसी को देखूंगी नहीं, आंख नहीं खोलूंगी, कुछ सुनूंगी भी नहीं, ना कुछ सुनूंगी ना कुछ बोलूंगी ना कुछ देखूंगी, आपके बिना कुछ नहीं करूंगी। तो राधा का जन्म हुआ, तभी वो ना आंख खोल रही है, ना रो रही है, ना बोल रही है, ना सुन रही है, ना खिलौने की आवाज सुन रही है, कुछ समझ में आ रहा है कि सुनाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। लेकिन नारद मुनि ने फिर उसको एक ट्रिक बताया उनके मम्मी डैडी को, डोंट वरी, आप एक अच्छा फेस्टिवल बनाओ, जिसके लिए आप सोच रहे हो करो कि नहीं करो, क्योंकि बच्चे तो अंधी है, गूंगी है, बहरी है, तो कैसा फेस्टिवल बनाएंगे उसका जन्म का, इट्स लाइक एम्बैरेसमेंट ना, अभी आपको जिस बच्चे का जन्म उत्सव मनाएंगे वो अंधी है गूंगी है बहरी है, तो क्या लोगों को बोलेंगे, जब देखने को आएंगे तो बोलेंगे हाँ तो अंधी गूंगी बहरी है, क्या करेंगे, तो मजा नहीं आएगा। तो फिर वो संकोच में थे करो कि नहीं करो, तो नारद मुनि ने कहा आप करो और कृष्ण बलराम यशोदा नंद महाराज को जरूर बुलाओ, कृष्ण भगवान को बलराम जी को और उनके मम्मी पापा को जरूर बुलाना, उसमें सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही कृष्ण आए उसमें, तो कृष्ण ने स्पर्श किया तो कृष्ण के शरीर से बहुत सुंदर सुगंध आई, वो सुगंध जब नाक में आई तो उसने आंखें खोली और बहुत सुंदर आवाज किया ध्वनि प्रेम से, सो किल्लोड़ कहते हैं, किल्लोड़ मतलब नॉइज नहीं, किल्लोड़ इज अ वेरी प्लेजरेबल साउंड, वेरी लविंग साउंड, सुनते ही आनंद भरा आएगा हृदय में, ऐसा साउंड किया उसने, तो साउंड सुन सब लोग भाग के आए, क्या हो गया, देखे तो राधा रानी ने आंख भी खोली है और वो भी बोल रही है, ऐसा टाइप का प्रेम वहां पर होता है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी वृंदावन धाम अर्थ पे उन्होंने प्रकट किया हुआ है, और कहते हैं कि वो ना डिस्ट्रक्शन जब होता है ना वर्ल्ड का, इसको कुरान में बोलते हैं कयामत, और बहुत सारे वर्ड्स है उसको अलग स्क्रिप्चर्स में, द डूम्स डे बोलते हैं उसको, तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा, तभी भी ये वृंदावन डिस्ट्रॉय नहीं होता है, वैसे रहता है, एक जगन्नाथपुरी, एक वृंदावन और एक मायापुर, ये तीन चीजें जो है ना वो वैसे रहती है, बाकी सब डिस्ट्रॉय हो जाता है, दोबारा प्रोड्यूस होता है, लेकिन ये तीन चीज वैसे रहती है। वो धाम भगवान ने प्रकट किया, तो वो धाम के एक जगह की कहानी मैं आज बताऊंगा आपको, ये तो इतना लंबा प्रवचन क्यों लिया, पहले शुरू क्यों नहीं आपने, आधा घंटा हो गया, अरे आपको अगर समझो एक बढ़िया सी 5-star राइस की खीर आपको देना है तो आपको एक अच्छा पात्र देना पड़ेगा, पहला कप देना पड़ेगा, एक चम्मच देना पड़ेगा, एक टॉवल देना पड़ेगा, इस पर रखेंगे और समझाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या डाला हुआ है, कौन सा आइटम इसमें गिरा है, इसका टेस्ट कैसे होता है, कैसे खाना है उसको, तभी उसको आपको आनंद आएगा ना। आपको लग रहा है कि मैं सूप दे रहा हूँ, सूप के लिए आएगा तो नहीं मीठा क्या है ऐसा लगेगा आपको, लेकिन पहले अगर फोर वर्ड देंगे ना डिस्क्रिप्शन तो फिर आप ऐसा ऐसा करके खाएंगे उसको। हमारे मेडिकल में कैसा होता है ना, देयर इज अ सेंट्रल फेज, पहले उसकी खुशबू आती है, फिर सुनते हैं कि मम्मी आज डोसा बना रही है, मम्मी आज इडली बना रही है, वो पहले सुनते हैं, फिर दिमाग में ही चालू होता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ सिक्रेशंस। हाँ मैडम आई एम राइट ना, सेंट्रल फेज देन गैस्ट्रिक फेज देन इंटेस्टिनल फेज। तो सेंट्रल फेज जब तक अच्छा नहीं होता ना तब तक गैस्ट्रिक फेज पैदा ही नहीं होता है। अगर अच्छी भूख लगी नहीं होगी ना तो 5-star फूड भी देंगे ना आपको तो वो पॉइजन की तरह आपके लिए। अगर आपको 5-star खाना पूरा खिला दिया और बोलेंगे ये ना एकदम ऑर्डिनरी खाना था, रियल खाना अभी आ रहा है, तो आप बोलेगा अभी बस हो गया, अभी वहां बंद दो आप, नहीं नहीं 5-star नहीं 7-star खाना है, बोले नहीं नहीं अभी बंद दो प्लीज, अभी मेरे को उल्टी हो जाएगी। 7-star फूड देने के बाद भी आपको उल्टी हो सकती है अगर आपका पेट भरा हुआ है और आपको भूख लगी नहीं, लेकिन अगर आपको राइट भूख लगी हुई है, राइट टाइम, रात का देर रात भी नहीं, दिन में 12 बजे अच्छी भूख लगी हुई है और मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मैं आपको 5-star खीर खिलाने वाला हूँ, ये उसके लिए रंग बिरंगे पॉट दिया हुआ है, ये उसका स्पून है, उसको धीरे धीरे खाना है, तो ऐसा आनंद आएगा आपको ना, फिर वो एक पॉट में आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये प्रिपरेशन है, फोर वर्ड हर एक किताब में होता है ना, फोर वर्ड क्यों होता है, ताकि किताब में क्या दिया है वो पहले उसको सारांश में बताते हैं इन शॉर्ट, ताकि व्हाट यू नो यू व्हाट टू व्हाट टू एक्सपेक्ट। इसलिए सॉरी इतना बड़ा फोर वर्ड दिया मैंने। तो ये कुसुम सरोवर जो जगह है ना बहुत ही सुंदर जगह है, वो गोवर्धन के बीच में है, आंखों के लिए भी बहुत सुंदर है देखने के लिए, बहुत विशाल पौंड है, बहुत गहरा पौंड है, इतना सुंदर पौंड है, उतने सारे डेकोरेशन उसके खिलाफ बनाए हुए हैं, बहुत ही सुंदर। वो एक एक्चुअली फॉरेस्ट के अंदर है, वो उसका नाम है कुसुम वन, फॉरेस्ट ऑफ फ्लावर्स। और फॉरेस्ट ऑफ फ्लावर्स में क्या होता है, वहां पर राधा रानी रोज आती है और भगवान के लिए फूल बिनती है, शी पिक्स अप फ्लावर्स विद हर फ्रेंड्स, वहां से पिकअप करते हैं, फिर जाके माला बनाते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं। तो वो फॉरेस्ट है वो, उसके बीच में अशोका फॉरेस्ट भी है, बहुत सुंदर, इतना आज भी कलयुग में भी, आज इतना दिन होने के बाद भी इतना सुंदर वातावरण है वहां पर। ऐसे ना कभी कभी क्या होता ना, वो जगह का ऑरा जो है ना इतना स्ट्रांग है कि आप वहां जाते एकदम शांति का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, सब दुख दर्द मिट जाते हैं, दुख दर्द होंगे तो भी दिल में ऐसा अनुभव होता है कि क्या दुख दर्द, किधर है दुख दर्द, तो है ही नहीं कुछ ऐसा लगेगा आपको, क्योंकि वेन वी आर ओवरवेल्म विथ रियल हैप्पीनेस इवन मिजरीज अपीयर टू बी डिसअपीयरिंग, दे बिकम है वो मिजरी वहां पर है लेकिन उसका इफेक्ट आपके नहीं होता है, दे फेल टू अफेक्ट यू बाय द पावर ऑफ बींग ओवरवेलमिंगली हैप्पी। ये एक हैप्पीनेस का फॉर्मूला है, बहुत सारा आनंद आएगा ना तो दुख भी कमजोर हो जाते हैं, आपको परिणाम नहीं करते आपके ऊपर, वैसा अनुभव वहां पर होता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक दैट, आपके अंदर कितना भी दुख होगा ना तो भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप प्रवेश करेंगे सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे और केवल आनंद का अनुभव रहेगा, और वो आनंद के अनुभव के स्ट्रेंथ के ऊपर आप बाकी सारे दुख जो चल रहे दुनिया में उसको झेल सकते हैं। दुख के बीच में होकर भी आप हंसते रह सकते हो, क्यों, अगर आपने उतने आनंद का स्पिरिचुअल आनंद का अनुभव किया है तो बहुत सारे दुख भी आप हंसते हंसते झेल सकते हो। लोग क्यों तड़प रहे हैं, क्योंकि वो केवल मिजरी का अनुभव करते हैं, हैप्पीनेस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं उनके पास, तो उनके उनके झोली में तो दुखी सफरिंग ही आएगा ना। लेकिन जिनके जीवन में सफरिंग है एक्चुअली, फिजिकल सफरिंग है, मेंटल सफरिंग है, फाइनेंशियल सफरिंग है, सोशल सफरिंग है, उनके जीवन में अगर भगवान के भक्ति का डिवोशन का आनंद बहुत सारा आ गया तो वो दुख को भूल जाते हैं। बिकॉज सो मच ऑफ हैप्पीनेस मेक्स द सफरिंग इनसिग्निफिकेंट. When there is no happiness, that small suffering is a very big suffering. So painful, so drowning. तो हम लोग बचपन में एक बताते थे, जब ये मोबाइल है ना, इसकी एक लाइन है, तो एक लाइन से ड्रॉ किया यहाँ पर, और बोला कि अभी ये लाइन को ना छूते हुए उसको छोटा करो. This is the line, 3 centimeters. Without touching this line, make it small. तो कैसा करने का उसको? Touch भी नहीं करने का उसको. तो एक लड़का आया, एक पेंसिल लिया, उसके सामने एक बड़ा लाइन ड्रॉ किया, यहां से लेके जब तक लाके, तो अपने आप छोटा हो गया लाइन वो, है ना? There is no other way of making that line smaller. Only thing is you have to make a bigger line in front of that, then it becomes small. So there is no other way to reduce suffering of life. You have to now draw a big line of happiness against that suffering line. Then it becomes, automatically it becomes insignificant or small. If you draw a line from there to here, this becomes insignificant. यही भगवान भी यही करते हैं. वो आप लोगों को, हम लोगों को अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड का ऐसा आनंद देना चाहते हैं जिससे आपकी सारी सो कॉल्ड मिजरीज इनसिग्निफिकेंट हो सकती है. तो वो फूल वन में राधा रानी फूल बिनने आती है. तो एक दिन राधा रानी और सब सखियां वहां पर फूल बिन रही थी, हाँ, वेरी वेरी बिजी इन प्लकिंग ऑफ फ्लावर्स. और वो हमको एक सीखना जरूरी है उसके अंदर, कि जब राधा रानी और गोपियां फूल बिनती है, कैसे बिनती है वो गॉसिप करते करते गिनती नहीं है, एब्सॉर्प्शन रहता है उसके अंदर. भक्ति का एक डेफिनेशन है, इफ यू आस्क डेफिनेशन ऑफ भक्ति इन वन वर्ड, डिफाइन भक्ति इन वन वर्ड, व्हाट इज दैट वर्ड? एब्सॉर्प्शन, मग्न होना, नथिंग एल्स बट दैट. तो वो अगर आपको बोला है, देखो रस आप प्रभु येलो फूल बिनना है आपको, तो वो खाली येलो फूल ही देखेगा, दुनिया में कुछ देखेगा नहीं. उसके लिए ओनली लव, ओनली टारगेट इन लाइफ इज टू सी येलो फ्लावर्स. बाद में उससे अच्छे पिंक फ्लावर्स है, उससे अच्छे और कोई कलर के फ्लावर्स है, तो उसको देना देना नहीं. इज एब्सॉर्ब्ड ओनली इन येलो फ्लावर्स बस. और किसी को पिंक बोला है तो उसको पिंक के बिना दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं, वैसा एब्सॉर्प्शन है उनका. सब लोग ऐसे मग्न हो गए फूल बिनने में, किसी की दुनिया में और कुछ है ही नहीं उस फूल के बिना, जो जिसको बिन रहे हो, इतना मग्न हो रहे. हम लोगों को भक्ति ऐसे करनी चाहिए. ऐसा नहीं हरे कृष्णा ने ब्रेकफास्ट में क्या है, हरे कृष्ण बासुंदी बनाया लगता है, हरे कृष्ण खीर को नहीं बनाते हैं, रोज रोज वही खिलाते हैं, हरे कृष्ण दिस इज आवर भक्ति, मिक्स्ड विद सो मेनी डिजायर्स, अल्टीरियर डिजायर्स. लेकिन गोपियों का ऐसा नहीं है, उनके जीवन में भगवान की भक्ति इज अल्टीमेट पर्पज. तो जब मग्न हो गए हैं तो वहां से माली आता है डंडा लेके, ठाक ठाक ठाक. तो कुछ गोपियां तो सावध हो जाते हैं, दे एब्सॉर्ब बट दे जस्ट वेक अप एंड दे से हे भागो भागो भागो, माली आ रहा है, माली आ रहा है. तो सब लोग अपना अपना, सब लोग के पल्लू जो है ना कपड़ा ऐसे सब कांटों में अटका हुआ है, वो सब छोड़ाते हैं. तो कुछ पल्लू के अंदर कप फूल रखा है, कुछ गिर जाते हैं, कुछ रहते हैं, तो ऐसे इकट्ठा करके भाग जाते हैं सब लोग. राधा रानी भागो भागो भागो, माली आ रहा है. तो राधा रानी के पसीना आ जाता है इधर, और वो अपना सब जगह पल्लू अटका हुआ निकालने लगती है. तो बेचारी यहाँ निकालते तो यहाँ अटक जाता है, यहाँ निकालते तो यहाँ अटकता है, ऐसे करके 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 शी स्ट्रगलिंग और सारे फ्लावर्स सब जमीन पे गिर जाते हैं. फिर भी वो अटकी हुई है, और माली डंडा लेके सामने आ जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से देखता है, शी सो फियरफुल. और सब सखियों की आवाज जो है ना वो राधा रानी राधा राधा रानी राधा रानी राधा रानी दूर चले गए ना सब लोग. तो द साउंड इज ऑल्सो बिकम वेरी फीबल, दे आर गॉन लॉन्ग डिस्टेंस. और वो अकेली वहां पर खड़ी, तो घूर के देख रहा है उसको कि मैंने चोर को पकड़ा है, अभी इसको अरेस्ट करूंगा और दंड दूंगा, ऐसे उसके भाव है चेहरे, बोले रहा है कुछ, बड़ी बड़ी आंखें, ऐसी बड़ी मुस्टैच, सब फेटा पहन का, ऐसा हाथ में दंड है बड़ा. सडनली हंस देता है वो, सडनली स्माइल्स. फेटा निकाल देता है, मूंछ भी निकाल देता है और मुरली निकालता है। ओ ओ आप हो, मैं तो डर गई थी, वो तो कृष्ण थे है ना। तो राधा रानी बोलते अरे मैं इतना डर गई थी, इतना पसीना आया, देखो हृदय भी उड़ रहा है कितनी जोर जोर से, ऐसा क्यों किया आपने? बोले आज मुझे आपके साथ अकेले मिलने का दिल था, इसलिए मैंने सब गोपियों को ये बेस बनाकर डंडा दिखाकर भगा दिया, अकेले मिलने का था। ठीक है, अच्छी बात है बहुत। तो कृष्ण पूछते हैं कि फिर ये जो फूल जो आप बिनते हो ना, क्या करते हो उसका रोज? आपके लिए माला बनाते हैं, फिर आपके लिए भेजते हैं, चलो फिर बनाओ माला। नहीं अभी तो जमीन पे गिर गया ना, अभी तो धोना पड़ेगा उसको, तो रोज धोते कैसे हो? रोज जमुना में जाके धोते हैं, तो चलो जाएंगे जमुना में धोने के लिए। नहीं नहीं आपके साथ में जाएंगे तो पकड़ेंगे ना लोग हमको। तो इधर छुपके छुपके वन में अकेले मिल रहे को देख दे रहा है, ठीक है, लेकिन जमुना जी का रास्ता तो मेन रोड से जाता है, आई कैन नॉट वॉक विथ यू अलोन। तो डोंट वरी, इसमें क्या है, जमुना जी में जाने के बदले में जमुना जी को यहाँ बुला लेते हैं, इसमें क्या है? You and me cannot do this, but he can do this. खाली मन में सोचा कि यमुना जी प्लीज कम हियर, तो यमुना जी केम देयर। पैर से जब पैर से एक सा खड्डा जमीन में बनाया और बोला यमुना जी यहाँ पानी भर दो अपना, तो बहुत बड़ा ऐसा पॉन्ड बन गया वहां पर, जिसका नाम क्या है? कुसुम सरोवर। कुसुम यानी फ्लावर, सरोवर यानी पॉन्ड। तो वहां पर भी जैसे ही वो जहां खड़े हैं वहीं पर ऐसे उसका किनारा आ गया, मतलब लाइक आई एम सिटिंग हियर नथिंग हियर, सडनली ये पॉन्ड मेरे सामने आ गया, तो मैं यही खड़ा हूँ। तो जमीन से जो फूल गिरे हैं उसको उठाते हैं और जमुना जी में धोते हैं उसको, फर्स्ट क्लास साफ करके, बहुत सारे फूल हैं। तो फिर वो कहते हैं कि राधा रानी को बोलते हैं कि कैन आई डेकोरेट यू विद दिस फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ यू डेकोरेटिंग मी और मेकिंग माला फॉर मी। हाँ ठीक है, कर सकते हैं। तो फिर कृष्ण भगवान क्या करते हैं, वो फूलों से राधा रानी के बाल सजाते हैं, पहले बाल बनाते हैं बाद में सजाते हैं। तो अभी मैं कल इनके घर पे था गोपी प्रिया भी, तो वो उनकी बेटी जो है ना तुलसी गोपी, उसको सामने बिठा के उसके बाल बना रही थी। तो लड़की सामने, उसका मुंह उस तरफ और माँ उसके पीछे है ना, तो वैसे ही कृष्ण पीछे सामने राधा रानी और उसके बाल वो संवार रहे हैं। और राधा रानी कैसे बच्चे कैसे होते हैं ना, अभी हाथ में आईना रखते हैं ऐसा, मम्मी ठीक से बनाना, वो साइड में तो किया बीच में करो, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं, मम्मी जोर से मत खींचना तो खोर दर्द हो रहा है। लेकिन राधा रानी ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, और सब लड़की कैसे होती है, अपने आप को देखते मिरर में, इनका मिरर ऐसा है, इसको देख रहे हैं, खुद को नहीं देख रहे हैं, तो ऐसा एंगल रखा है, इसको देख रहे हैं, पीछे जो बाल बना रहा है उसको देख रहे हैं, क्योंकि उसको देखे बिना एक मिनट रह सकते नहीं है। और अभी वो पीछे के साइड में गए ना, आंख आगे हो गई, वो पीछे हो गए, तो उनको देखना कैसे, फिर ये मिरर में देखते हैं। इसको कहते हैं प्रेम, दिस इज लव। उस प्रेम प्रेम करने वाले व्यक्ति को देखे बिना एक क्षण भी उनका जाता नहीं है, सहन नहीं होता है उनको, इसलिए वो आम तौर पे हम लोग अपने आप को देखकर अपने आप को संवारना चाहते हैं, सजाना चाहते हैं, ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, लेकिन राधा रानी को खुद को ब्यूटीफाई करने की जरा से भी इच्छा नहीं है, उसको आनंद देने की इच्छा है। उसकी इच्छा है आज मेरे बालों को संवारूं और खुशी मिलेगी उसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम, यू डू व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर प्लीजेस यू, माय प्लेजर इज नॉट इंपॉर्टेंट, इफ यू आर प्लीज्ड आई एम हैप्पी, इट इज योर हैप्पीनेस दैट मेक्स मी हैप्पी, इट इज इन योर हैप्पीनेस आई सीक माय हैप्पीनेस, that is spiritual life. Spiritual life is not about your happiness. Spiritual life is about the happiness of devotees and happiness of the Lord of devotees. उसको हमने हमारी spiritual language में उनमें क्या बोलते हैं? परमार्थ बोलते हैं, परमार्थ। But परमार्थ एक ऐसी activity है जिसमें बहुत सा स्वार्थ छुपा हुआ है। अगर आप स्वार्थ activity करेंगे, स्वार्थ वाली selfish activity करेंगे, तो हो सकता है आपको कभी कभी खुशी मिलेगी, लेकिन बहुत बार खुशी मिलेगी नहीं, क्योंकि सेल्फिश एक्टिविटी विल नेवर यील्ड हैप्पीनेस, ओनली यील्ड मिजरी। पर जैसे ही सेल्फिशनेस को छोड़कर आप दूसरों के लिए काम करोगे ना, पहले आपका दिल आनंद से भर जाएगा। सो परमार्थ इज द बेस्ट स्वार्थ, व्हेन यू डू परमार्थ योर स्वार्थ इज गारंटीड इट विल बी फुलफिल्ड. इसलिए कभी भी दूसरों की सेवा करने में हिचके जाना मत. डोंट वरी अबाउट क्या व्हाट विल हैपन, माय मनी विल गो, माय रिसोर्सेज विल बी ओवर एंड माय दिस विल टाइम विल बी फिनिश्ड. नो, दूसरों को सेवा करते ही आपके जीवन आनंद में भर जाएगा. नहीं तो हम लोग उधर 25 साल से बरसाने में कैंप क्यों करते हैं? इतना एनर्जी टाइम प्लानिंग जाता है उसके अंदर. सबसे पहला हैप्पीनेस तो हमको मिलता है, पेशेंट को बाद में मिलता है उसका ऑपरेशन होने के बाद, लेकिन सबसे पहला हैप्पीनेस तो हमको मिलता है. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. यही उसका कारण है कि उसको सालों साल हम करते आ रहे हैं. अदरवाइज हाउ कैन वन कंटिन्यू मिजरेबल एक्टिविटी? एक बार करेगा, दो बार करेगा, लेकिन मिजरेबल एक्टिविटी यू कैनॉट गो ऑन डूइंग विद द सेम ज़ील और मे बी विद द इंक्रीजिंग ज़ील. यू कैनॉट डू दैट. But with increasing zeal, if you serve others, then you will get more and more happiness for yourself. And your life will be fulfilled first before their life is fulfilled by your service. तो राधा रानी का रहस्य यही है कि उसके बाल सवारे जा रहे हैं, उसको खूबसूरत बनाया जा रहा है, लेकिन उसमें राधा रानी को खुद को खूबसूरत बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो खूबसूरत बनाने में कृष्ण को खुशी हो रही है, उसमें उसको खुशी है. आप मेरी सेवा करने का प्रयास कर रहे हो, मैं आपकी सेवा करने का प्रयास कर रहा हूं, और दोनों खुशियों को प्राप्त कर रहे हैं. और मैं केवल मुझकी खुशी करने को कोशिश कर रहा हूं, आप केवल आपको खुशी करने की कोशिश कर रहे हो, दोनों दुखी हैं. मैं बोलता हूं सेल्फिश, तो सेल्फिशनेस थे और क्यों हैप्पीनेस. लेकिन सेल्फिशनेस छोड़ के जब भी मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरी सेवा करोगे, हम दोनों ही खुश हो जाएंगे. इसलिए जो शादी में होता है ना प्रवचन, हमको शादी में बीच में 15 मिनट बोलने को बोलते, क्या फिर हमको समझा दो व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैरिज. तब लोग यही बोलते हैं, अगर आपको शादी में खुश रहना है, विवाहिक जीवन में, गृहस्थ आश्रम में खुश रहना है, तो पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, पति को पत्नी की सेवा करनी चाहिए. हम लोग कैसे सोचते हैं, व्हाट इज इट देयर इन फॉर मी, ये वर्ल्ड का एक पंच लाइन है. मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, हर चीज के अंदर मुझे क्या मिलेगा, यही रहता है हमारा. लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान को क्या देंगे हम, यही सोचते रहते हैं. मटेरियल लाइफ में मुझे क्या मिलेगा, ये सोचते रहते हैं. और जब तक मुझे क्या मिलेगा सोचते रहेंगे, दुख बने रहेंगे, इंक्रीजिंगली एक्सपोनेंशियली दुख चलते रहेंगे. और जब आप सोचेंगे कि मैं सेवा कैसे करूंगा दूसरों को, भगवान को, भगवान के भक्तों की, बाकी लोगों की सेवा करूंगा, तब आपका खुशी शुरू होगी और बाकी लोगों को भी खुशी मिलती रहेगी. तो राधा रानी का यही भाव है, कृष्ण भगवान उनको सच सच सजा रहे हैं उनको, और राधा रानी उनको खुशी देने का प्रयास कर रही है. इट इज इन योर हैप्पीनेस दैट आई सीक माय हैप्पीनेस. तो इसकी और एक भी कहानी है, क्योंकि कैसा ना भगवान एक ही कहानी बार बार रिपीट नहीं करते. उस जगह पर रोज राधा रानी फूल बनने आती है और रोज अलग अलग लीला होती रहती है. उधर थोड़ी एक ही पास टाइम था, उधर एक जगह पर अनलिमिटेड पास टाइम. दूसरे पास टाइम में क्या हुआ, सब सखियां ना उनके घर में एक उत्सव था, उसका नाम है सांझी लीला. सांझी लीला का मतलब क्या होता है, काउ डंग से दीवार पे बनाते हैं डेकोरेशंस, ब्यूटीफुल डेकोरेशन, आपको कभी आके देखना चाहिए, कार्तिक महीने के शुरुआत में होता है. इतना सुंदर डेकोरेशन होता है, काउ डंग से बना होता है, प्योर काउ डंग से, और उसमें फूल लगाते हैं, उसमें बर्ड्स लगाते हैं, उसमें डेकोरेशन में कलर लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, दीवार पे करते हैं, जमीन पे करते हैं, और शाम को करते हैं. और एक सांझी देवी है, वो सांझी देवी के आनंद के लिए उसको बनाते हैं और सांझी देवी का पूजन भी करते हैं हर शाम को. तो वो उत्सव चल रहा था, तो उसके लिए फूल मिलने के लिए जब वो अपने रूटीन गार्डन में गए तो देखा कि सब फूल तो ऑलरेडी कोई निकाल के लेके गया. तो वो वापस आके बोलते हैं कि अभी हम लोग ना कुसुम वन में जाएंगे आज, वहां पर फूल शायद किसी ने निकाले नहीं होंगे. सांझी का उत्सव है, बहुत सखी आके आकर बहुत औरतों ने लेके गए होंगे, तो हमको दूर जाना पड़ेगा अभी. तो वो जाकर कुसुम सरोवर में जाने का प्लानिंग करते. ये खबर कृष्ण को पहुंचती है, सब सखा लोग आते हैं, बोलते आज इनको हम लोग चीटिंग करेंगे, अच्छा उनको सबक सिखाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे, उनको जरा मजाक उड़ाएंगे उनका. तो कृष्ण भगवान बोलते अरे मुझे थोड़ा बुखार आ रहा है आज, जरा थोड़ा तकलीफ हो रही है, तो ऐसा करो आप लोग जाओ और मैं आता हूँ थोड़े बाद में, थोड़ा रेस्ट करके आता हूँ. क्योंकि भगवान ने मन में पहले से बोल सोच के रखा था कि जब मैं नहीं जाऊँगा तो इतने ये दूर ग्वाल बाल खुद भी नहीं जाएंगे, उनको मालूम है जब मैं रहूँगा तो दूर दूर जा सकते हैं. I will take them, but if I am not coming, then they will not go so far. उनको पता था. तो बच्चे लोग हाँ हाँ बोल के निकल गए. तो बच्चे लोग उधर गए नहीं, सिर्फ इधर किधर गए. और कृष्ण भगवान मालिका भेष बदल के कुसुम वन में आए और वही हुआ जैसे मैंने पहले बताया था, सब सखियां भाग गई, सॉरी कुछ नहीं भागी नहीं। तो इस लीला में क्या हुआ कि राधा रानी एक जगह पर फूल बिन रही थी और सखियां अलग जगह पर बिन रही थी, तो राधा रानी का पल्लू सब जगह अटक गया। तो उतने में माली आया, बड़े प्रेम से उसने उसका पल्लू निकाल के उसको फ्री करा दिया, उसके गिरे हुए फूल भी उठा के उसके हाथ में दिए और चुपचाप चला गया। और राधा रानी वो सब सवार के सब कपड़ा निकाल के उसमें सोके अपने सखियों के पास में आई। बोले क्या हुआ राधा रानी, आपने फूल नहीं बिने आज? क्या कहूँ, फूल तो बिने थे लेकिन एक आदमी ने आकर जो मुझे रिहा किया ना, कांटों से फ्री कर दिया, उसके बाद मेरा दिल बहुत तड़प रहा है। उसकी वो कौन था उसको मिलने का दिल कर रहा है, उसका रूप, उसका सुंदरता, उसका प्रेम, और जिस प्रकार से आके मेरे को फ्री कर दिया उसने, मेरा दिल अभी लगता है छीन के लेके गया हूँ, तो मुझे बड़ा उदास लग रहा है। तो कहते सखिया बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, अभी तुम्हारे फूल तो तुमने लिए नहीं है, हमने काफ़ी फूल लिए हैं, अभी बहुत समय हो गया, पूजा करने का समय हो गया, अभी जाना चाहिए। राधा रानी बोलते कि नहीं, उसको एक बार मिल के जाते हैं, इसने हमको फ्री किया था। तो सब सखियाँ उधर आती हैं और उनको मिलती हैं। तो वो कहता है कि ये आपने फूल क्यों बिने थे? बोले सांझी लीला में डेकोरेट करने का ना, इसलिए किए थे, अभी तो वो गंदे हो गए ना, कुछ गिर गए नीचे, तो भगवान ने वहाँ पर कुसुम सरोवर पैदा किया। और फिर सखिया बोले अरे बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, अभी हमको इतना टाइम नहीं है, हमको तो अभी जाने का है, अभी आप फूल धोएंगे ये करेंगे बहुत टाइम जाएगा, हम जाते हैं। तो बोले आप जाओ कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ पीछे। तो भगवान ने वहाँ पर फूल धुलवाए, जमुना जी को बुलवाया, कुसुम सरोवर प्रकट किया और राधा रानी के बाल संवारे। और फिर बोले कि राधा रानी बोले बहुत देर हो गई, अभी वो घर में खान जी की पूजा कौन करेगा? बोला आप चिंता मत करो, तीन सखियाँ बची थी पीछे, बाकी सब चली गई थी, ललिता विशाखा और एक और सखी थी, और राधा रानी पीछे बची थी। तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत ही लेट हो गया, अभी कैसे हम लोग हमारा साल जी कैसे पूरा होगा? बोला आप निश्चिंत रहो, आप आराम से जाओ, आपको आपकी सांझी रेडी मिलेगी। तो भगवान वहां पर सखी बनकर, यानी गर्ल गर्ल बनकर गांव में गए और राधा रानी और वो तीन सखियां के चारों सखियों के घर पे अपने हाथ से सांझी बनाई, उसको डेकोरेट किया उनके फूलों को। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि उस दिन सबसे बेस्ट सांझी वो चार लोगों की थी, किसी को पता भी नहीं था कि कौन सी सखी आके बना के गई उसको। तो ये भी दूसरा पास्ट टाइम है उसके अंदर। तो ऐसा कुसुम सरोवर जो है ना, वो भगवान के लिए फूल बिनकर उनकी सेवा करने का स्थान है। कोई भी सखी सोचती नहीं है कि आज मैं ना ऐसा फूल बिनूंगी कि मेरे बालों को मैं सुंदर बनाऊंगी आज। Nobody is thinking like this. Everybody is thinking only one thing कि राधा और कृष्ण के लिए हमको माला बनाकर देना है। इतना सुंदर भाव है कि समझे आपको बोला येलो फ्लावर लेके आओ, आपको बोला पिंक फ्लावर लेके आओ, तो आपने वो काम किया, तो लाके क्या करना है, इनको देना है, तो उनको दे दिया। फिर उनको ललिता देवी बताती है कैसा माला बनाना है, येलो ग्रीन ये पिंक ब्लू जो भी है, सिक्वेंस कैसा है वगैरह, बस उतना काम हो गया। फिर उनका काम क्या है, माला बना के इनको देना है, ये माला बना के रेडीमेड माला ले लेंगे। फिर इनका काम क्या है, ये राधा रानी को जाके देना है। फिर उनका काम क्या है, वो कृष्ण को पहनाना है। ये बोलेंगे नहीं अरे मैंने फूल बिने थे येलो रंग के, इन्होंने पिंक के बोले थे, और माला तो कोई और पहना रहा है, हमको कब मौका मिलेगा, ऐसा मन में होता ही नहीं कभी। आई एम हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस सर्विस, मुझे वो ग्लोरी मिले, वो क्रेडिट मिले, वो कुछ मिले ना मिले, आई एम ओके। कितना फर्स्ट क्लास फीलिंग है। आप देखो हम लोग कैसे करते हैं, हमको जितना सा काम करेंगे ना, वी वॉन्ट द फुल क्रेडिट कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। वो जानते हो ना, वो माला में जो येलो फूल है ना, वो मैंने लाए थे, भले पिंक फूल उससे सुंदर होंगे और अच्छे होंगे, लेकिन बार बार मैं येलो फूल के बारे में सोचूंगा क्योंकि मैंने उसको बिना था। आई एंड आई, नोबडी एल्स बट आई, ये हमारा मूड होता है। और गोपियों का मूड कैसा है, गिव ऑल क्रेडिट टू अदर्स, लेट अदर पर्सन गेट द क्रेडिट, लेट अदर पर्सन गेट द अपॉर्चुनिटी एंड प्रिविलेज टू ऑफर दैट माला टू कृष्णा, इवन दो आई हैव सिलेक्टेड द फ्लावर्स। तो जब देखते हैं कि राधा रानी वो माला को भगवान को पहना रहे हैं, इधर खुशी हो रही है, वाह वाह क्या बात है, अंदर ही खुशी हो रही है, अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, अंदर से खुशी हो रही है कि फाइनली हमको अनाउंसमेंट दे, यू आर अनाउंसमेंट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम. प्लीज अंडरस्टैंड येलो फ्लावर्स आर ब्रॉट बाय हिज ग्रेस रसामृत प्रभु हरि बोल. दिस इज व्हाट वी वांट एवरी टाइम. बट वहां पर ऐसा नहीं है. नोबडी वांट्स एनी क्रेडिट. दे आर सिंपली हैप्पी कि मुझे सेवा का मौका मिला, वो माला में येलो फूल बिनने का मौका मुझे दिया गया. इट इज माय हैप्पीनेस कि मुझे और भी मिलेगा तो और भी करूंगा. लाइफ टाइम में कभी मुझे वो माला उनको पहनाने का मौका नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन फूल बिनने का मौका देते रहो. वो बोलेंगे लाइफ टाइम कभी माला पहनाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन माला बनाने का मौका मिलता रहे तो चले. कल उठ के माला देने का बनाने का सेवा छोड़ के बोलेगा पिंक फ्लावर लेके आओ तो भी चलेगा, लेकिन सेवा दो. We are happy in doing our सेवा. ये उस जगह का भाव है. और एक उस जगह पर बहुत सुंदर लीला हुआ है. ये भाव आपको सबको समझ में आया ना. Unless and until we are focused on pleasing the Lord through our activities, we will not be happy in life. As long as we are focused to please ourselves, guaranteed you will be miserable in life. यही कुसुम सरोवर का एसेंस है, सार. उस जगह को जाना है, समझना है तो यही है. कहानी तो बहुत रोचक है, बहुत मजेदार कहानी है, वो मनोरंजन तो कर देगा आपको उसका, लेकिन एसेंस उसका टेक होम मैसेज यही है. टिल द टाइम यू स्ट्रगल टू प्लीज योर सेल्फ, गारंटीड यू आर मिजरेबल एंड विल बी मिजरेबल. टिल द टाइम यू वॉन्ट टू प्लीज अदर्स एंड कृष्णा, यू विल बी हैप्पी इन लाइफ. तो उसी स्थान पर एक और सुंदर लीला हुआ है. हाँ भाई, समय इतना नहीं अपने पास, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे उसको. आप जानते हैं भगवान कृष्ण एक समय पर अपना पृथ्वी पर अपना लीला करके चले गए. जिस काम के लिए आए थे वो काम पूरा हुआ, तो एट द एंड ऑफ द टाइम ही वेंट बैक. जाने के पहले उन्होंने बोल के रखा था उद्धव जी को, परीक्षित महाराज को और वज्रनाभ को. परीक्षित तो अभिमन्यु के बेटे थे और वज्रनाभ उनके खुद के ग्रेट ग्रैंडसन थे, और उद्धव जी उनके चचेरे भाई थे. तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे. उनको बोल के रखा था जब मैं जाऊँगा ना तो मेरे वाइफ जितने भी है पत्नियां हैं वो सब दुखी हो जाएंगे बेचारे, वो अपने दुख को झेल नहीं पाएंगे कि मेरे पति सब चले गए हैं. और तो उनको आप लोग वृंदावन में लेके आना, वहां पर वो शांत हो जाएंगे. दैट यू विल कम टू नो हाउ. तो उनके आदेश के अनुसार परीक्षित उद्धव सॉरी परीक्षित और वज्रनाभ उनको 16,107 पत्नियों को वृंदावन लेके आए. और आठवीं कौन सी थी? वो 16,107 और 16,108 वाली कौन थी? यमुना. वो वृंदावन में ही थी. तो वो आए और यमुना जी को देखा तो वो सब ऐसे जल उसका उड़ रहा है आनंद से. तो वो सब पत्नियां रोती थी, रो रही थी. यमुना जी को पूछती आप भी हमारी को वाइफ हो, आपको दुख नहीं हो रहा है क्या? बोले हम ब्रजवासी पत्नी है भगवान की. और ब्रजवासी पत्नी को भगवान का जाने का दुख होता नहीं है कभी, क्योंकि हम भगवान से जुदा होते ही नहीं, हमेशा यूनाइटेड रहते हैं. वो आगे समझना है आपको इस बारे में, इस रहस्य को आगे इलेबोरेट करना है तो कुसुम सरोवर चले जाओ. वहाँ पर उद्धव जी आपको समझाएंगे सब कुछ. भगवान का प्लानिंग होता है सब कुछ. अपनी पत्नियों को दुख से रिहा करके धाम में वापस लौटाने के लिए उनका प्लानिंग रहता है. तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ जाते ही वो भगवान के नाम का बड़ा सुंदर कीर्तन करते हैं, कृष्ण की पत्नियाँ. अभी हम लोग ने भी कीर्तन किया, लेकिन जब भगवान की पत्नियां जब कीर्तन करती है तो कितना आनंद रहेगा उसके अंदर, कितना प्रेम रहेगा. अपने पति जिनके पति ही भगवान है स्वयं, उनके लिए उनका नाम पुकारते हुए कैसा उन्होंने गाया होगा उसका हम केवल इमेजिन ही कर सकते. और वो कीर्तन इतना पावरफुल था भगवान के नाम का कि वो कीर्तन सुनकर तृण का पत्ता ब्लेड ऑफ ग्रास बने हुए जो उद्धव जी हैं वो प्रकट हो गए उसमें से. जो तपस्या करके उद्धव जी ने वहां पर तृण का पत्ता बना हुआ है वो, ही हैज बिकम ब्लेड ऑफ ग्रास आफ्टर डूइंग लॉन्ग तपस्या ऑस्टेरिटीज पेनेंस. प्रयत्न पूर्वक तपस्या करके वहां पर तृण का पत्ता बने हुए हैं ताकि गोपियां उनके ऊपर चलेगी तो उनके चरणों की धूल जो है उनके ऊपर गिरेगी, थोड़ा थोड़ा प्रेम का रहस्य उद्धव जी को प्राप्त होगा. इस भावना से वो इतने टॉप पोजिशन से लेकर ब्लेड ऑफ ग्रास बने. तो वो ब्लेड ऑफ ग्रास बने हुए उद्धव जी जो है प्रकट हो गए मनुष्य फॉर्म में. तो वहां पर भगवान के कीर्तन की महिमा का वर्णन है कि भगवान का कीर्तन इतना पावरफुल है कि वो भगवान को प्रकट कर सकता है. आपको भगवान दिख नहीं रहे, लेकिन अगर भगवान का नाम आपने ऐसी तरह से पुकारा प्रेम से, तो पत्थर से और कहीं से भगवान प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रेम को ही रिस्पॉन्स देते हैं, बाकी किस चीज को रिस्पॉन्स देते नहीं है। ही नेवर रिस्पॉन्ड्स टू एनीथिंग एल्स बट ओनली प्योर सेल्फलेस अनमोटिवेटेड लव। तो उद्धव जी ने फिर जब ही दर्शन दिया उनको, तो उद्धव जी ने कुसुम सरोवर के किनारे में बैठकर भगवान की रानियों को 30 दिन तक भागवत सुनाया, श्रीमद भागवत कथा सुनाई। सुखदेव ने परीक्षित को केवल 7 दिन 7 रात सुनाई थी, क्योंकि सुखदेव के पास समय बहुत कम था, क्योंकि परीक्षित महाराज को 7 दिन का ही टाइम दिया गया था ना, 7 दिन के बाद तो साप था कि वो मर जाएगा, सांप काटेगा उसको, तो ही हैज लिमिटेड टाइम, सो ही हैड टू जस्ट मेक इट एवरीथिंग इन शॉर्ट, जो एसेंशियल थिंग्स है उसको शॉर्ट में बता के पूरा बताना है उसको, डिटेल में जाना नहीं है कुछ भी। लेकिन इनके पास कुछ टाइम मैंडेट नहीं था, तो उन्होंने 30 दिन तक कहानी सुनाया, और बोलने वाला कौन है, भगवान का कजिन ब्रदर, भगवान का मिनिस्टर, भगवान का क्लोजेस्ट फ्रेंड, बृहस्पति का शिष्य, बॉडी भी भगवान जैसी, कलर, कितने सारे एट्रीब्यूट थे उसके अंदर, इतना श्रेष्ठ व्यक्ति था, उठना बैठना खाना पीना खेलना सोना मजाक करना, क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियल दरबार में सलाह देना, बिग बिग स्ट्रैटेजी, सुरंत कंट्री, वो सब कुछ भगवान के साथ करते थे, वो टॉप मोस्ट पोजिशन पे थे, विरक्त होकर फिर तृण का पत्ता बनकर भजन कर रहे हैं वृंदावन में, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति है। उन्होंने भगवान के पत्नियों को वहां पर बैठ के 30 दिन तक भागवत सुनाया, और जैसे ही भागवत उन्होंने शुरू किया, उसी समय रानियों का सब दुख खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, भगवान चले गए इसलिए वो रो रही हैं, तो भगवान के मिले बिना दुख तो खत्म नहीं हो सकता ना। इसका मतलब ये है कि श्रीमद् भागवत का पहला वाक्य सुनते ही उनको भगवान के उपस्थिति का अनुभव हुआ। They experienced the presence of the Lord immediately in the words of Srimad Bhagavat. इसलिए Srimad Bhagavat को भगवान का स्वरूप भी माना गया है। Srimad Bhagavat भगवान स्वयं भगवान कृष्ण है, in the form of sound, in the form of all the 18,000 shlokas. तो जैसे वो शुरू हुआ उनका recitation, वर्णन शुरू हुआ, तुरंत भगवान, अब उनके पति भगवान जो है उनके होने का अनुभव वहां पर हुआ, तो सब दुख दर्द खत्म हो गया। तो सारा भागवत ऐसा श्रवण किया जैसे अपने पति के साथ बैठे हो, उनके साथ संग कर रहे हो, वही लीला कर रहे हैं, वही बातें हो रही हैं, वही प्रेम का संवाद हो रहा है, वही प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है, ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंसेस दे फेल्ट। तो मिजरी का सवाल ही नहीं है, लेकिन रियलिटी क्या है, भगवान उनको छोड़कर चले गए हैं, लेकिन वो तो ब्लिसफुल हैं। ये तो मैं कह रहा हूं शुरू से आपको कि मिजरी होते हुए भी भक्ति में दिव्य आनंद का अनुभव हो सकता है। जब दशम स्कंद हुआ शुरू, मतलब भगवान की स्वयं की कथा शुरू हुई, उसमें उन्होंने अपने आप को देखा कि मेरा उनसे विवाह हो रहा है उसकी कथा चल रही है, यमुना जी का विवाह हुआ उसकी कथा चल रही है, सुभद्रा जी सॉरी रुक्मिणी का विवाह हो रहा है उसकी कथा चल रही है, सत्य मामा का कैसे हुआ, जाम्बवती का विवाह कैसे हुआ, मित्रविंद का कैसे हुआ, नग्नजीत का कैसे हुआ, लक्ष्मणा का कैसे हुआ, सब बैठकर अपना ही विवाह का कथा सुन रहे, बड़ा आनंद आया उनको। उसके बाद में श्रीमद् भागवत के एंड में वो भगवान के धाम में चली गई, उनका दिव्य स्वरूप जो है ना वो प्रकट हो गया आकाश में, उससे वो जुड़ गई, और वहीं से भगवत धाम जहां भगवान चले गए वहां चली गई। वो जगह कितनी पावरफुल बन गया, उस जगह पर उद्धव जी ने भगवान के रोते हुए पत्नियों को आनंद देकर भगवान के साथ दोबारा मिला दिया, और वहीं से अपने धाम में भेज दिया उनको। इतना बड़ा सेवा उद्धव जी ने वहां पर किया है। तो श्रीमद् भागवत ये स्वयं कृष्ण की अनुभूति करने का एक सुंदर माध्यम है। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग में 8 बजे क्लास है जाना पड़ेगा, पता नहीं भूख लग रही है, सुबह से जब कर रहे हैं, प्रभु जी 1 घंटा प्रवचन करेंगे अभी, उसके बाद प्रसाद मिलेगा, उसके बाद टू मच नो, ऐसा भागवत सुनेंगे तो कैसा कृष्ण का अनुभूति होगा, नहीं होगा। भागवत में श्री कृष्ण की अनुभूति कैसे होती है, जिसको श्री कृष्ण की उपस्थिति की भूख है, रानियां श्री कृष्ण के उपस्थिति के लिए तड़प रही थी, इसलिए उनको कृष्ण का अनुभव तुरंत हो गया। और हमको उसी भागवत में नींद आती है अच्छी तरह से। शुरू में राधा माधव गाते हैं, लास्ट में एंड में हरी बोल पे उठ जाते हैं, प्रसाद के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे कैसे भगवान मिलेंगे हमको? जिसके हृदय में भगवान के लिए तड़प है उसको श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान तुरंत मिल जाते हैं। इसलिए ईगरनेस इज अ प्राइस टू अटेन श्री कृष्ण। अगर आपके हृदय में ईगरनेस नहीं है तो कृष्ण नहीं मिल सकते आपको। कृष्ण क्या, अगर पैसा भी चाहिए तो पैसे के लिए भी ईगरनेस चाहिए, टू अर्न मनी, टू गेट अ गुड वाइफ, टू गेट समथिंग इन लाइफ, उसके लिए भी ईगरनेस चाहिए, तो वही मिल सकता है या नहीं मिलेगा, लेकिन मिलने की संभावना है। तो भगवान भी बिना ईगरनेस भगवान नहीं मिल सकते। भगवान बड़ी चीप वस्तु है क्या ऐसे मिलने के लिए? आपको प्राइस देना पड़ेगा, उसका ईगरनेस का प्राइस पे करना पड़ेगा। यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ ईगरनेस, फिर आपको भगवान से मुलाकात होगी। तो उस जगह पर क्योंकि वो भगवान के लिए तड़प रही थी, केवल ईगर नहीं थी, वो तड़प रही थी, वो सफरिंग विद सेपरेशन, पेन ऑफ सेपरेशन, उसके वजह से उनको भगवान का तुरंत अनुभव हो गया। इसलिए वो जगह बहुत पावरफुल है। भगवान की कथा इतनी पावरफुल है कि वो भगवान को खींच के लेके आ सकती है आपके बीच में, हमारे बीच में। केवल बोलने वाले और सुनने वाले दोनों उत्सुक होने चाहिए, ईगर होने चाहिए। फिर जिस जगह भगवान की कथा हो रही है वहीं भगवान है, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन उनके उपस्थिति का सुगंध और अनुभव आपको दिव्य रूप में होगा। इन अ डिवाइन वे यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड इन अ प्लेस वेयर देयर इज लॉर्ड्स कथा बीइंग नरेटेड। उसी कुसुम सरोवर पे अनंत लीला चलती रहती है। एक सॉन्ग है उसका, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतना मंदिर मनोहर। ऐसे सुंदर कुसुम सरोवर है, उसमें एक बहुत बड़ा कमल है, दिव्य कमल, प्रकाशमान, एफलजेंट लोटस फ्लावर। उसके बीच जो जगह है ना, वर्ल्ड कहते हैं उसको, वर्ल्ड बड़ा जगह है बहुत। ऐसा अपना वो 10 रुपए का कमल की बात नहीं कर रहे हैं, उस कमल की बात कर रहे हैं, वो जो पूरा कुसुम सरोवर घेर चुका हुआ है, उसके बीच में बहुत जगह है, उसके बीच में रत्नों का सिंहासन है, ज्वेल्ड थ्रोन, उसके ऊपर राधा कृष्ण विराजमान है, श्याम सुंदर राधिका बैठे हुए, और उसके बहुत सारे पेटल्स हैं, पहले 8 पेटल्स हैं, बाद में और सारे पेटल्स हैं, बड़े बड़े पेटल, हर एक पेटल पे एक गोपी खड़ी है, सखी, और कोई वाद्य बजा रही है, कोई गीत गा रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई और कुछ सेवा कर रही है, कोई मदक बजा रही है, कुछ कुछ अलग अलग विविध सेवाएं कर रहे हैं, कोई चामर सेवा कर रहे हैं, कोई हवा दे रहे हैं, कोई तांबूल खिला रहे हैं, कोई मिठाई खिला रहे हैं, कोई नृत्य करके आनंद दे रहे हैं। तो ये दिव्य दृश्य जो है वो कुसुम सरोवर का दृश्य है। यहाँ पर नित्य रूप में सखियां भगवान की सेवा करते रहती है, गीत गाते रहती है। तो इस लीला को हमारे एक आचार्य ने देखा अपने मन के आंगन में, बाहर नहीं, दृष्टांत कहते हैं, दृष्टांत का मतलब यू सी द लीला ऑफ द लॉर्ड। तो उसने देखा कि भगवान राधा कृष्ण उस कमल में बैठकर हास परिहास कर रहे हैं, बहुत सुंदर भाषा में, मधुर भाषा में, प्रेम से, लाइट जोकिंग डिस्कशन इज गोइंग ऑन, वेरी लविंग इंटरेक्शंस। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि जो मैं देख रहा हूं, मेरी प्रार्थना है कि मैं देखता ही रहूं, आई जस्ट वॉन्ट टू कीप ऑन ऑब्जर्विंग दैट ब्यूटिफुल लीला ऑफ द लॉर्ड। यहाँ पर सब सखियां भगवान की सेवा कर रही हैं और मधुर संभाषण में हास्य परिहास हो रहा है, लाइट, वेरी लाइट एटमोस्फियर ऑफ जोक्स एंड स्वीट वर्ड्स ऑफ लव एंड अफेक्शन इज बींग एग्जिबिटेड ओवर देयर। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदाई स्फुरक मोरा माने। रतन दास कहते हैं कि ये सुखमय लीला जो है भगवान की, वो सदा मेरे हृदय में प्रकट होती रहे, स्फुरति रहे। लेट इट बी ऑलवेज बी इंस्पायर्ड इन माई हार्ट, इन द कोर्टयार्ड ऑफ माई हार्ट लेट राधा रानी एंड कृष्णा ऑलवेज रिजाइड एंड परफॉर्म देयर लीला। उसी जगह पर नारद मुनि एक बार आए थे। नारद मुनि, मैंने बताया ना आपको राधा रानी का जन्म हुआ, तो नारद मुनि वहां पर चले गए थे। उनके पास चार्ट था, चार्ट तो चार्ट में लिखा था कि ये जगह जीपीएस बता रहा था। नारद मुनि के पास अभी भी जीपीएस था, उनके हाथ में जीपीएस था, बता रहा है इधर इधर राजा रानी का जन्म हुआ है। तो उधर वो जीपीएस चालू किया मैंने, वहां पहुंच गए। वो घर पे गए, पूछा कि कोई बेटी का जन्म हुआ इधर, तो माता पिता को संकोच है ना, एम्बेरसमेंट है कि भी लड़की गूंगी भी है, वो अंधी भी है, बोल भी नहीं रही, कुछ भी क्या कैसे बताने का। बोलते कोई नहीं, कोई जन्म नहीं हुआ किसी का। मतलब जीपीएस रॉन्ग कैसे हो सकता है, जीपीएस इज ऑलवेज राइट, हमारा गणित रॉन्ग नहीं हो सकता है। लेकिन फिर माता बोल रही नहीं तो क्या कर सकता हूँ, तो सोचने लगे कि चले गए। वो फिर पूछे कि और कोई बच्चा हुआ है घर पे, तुरंत बड़े भाई को सामने करते, हाँ सुदामा बड़ा भाई है ना, ये यहाँ पर घर में है। अच्छा ओके, लड़की नहीं कोई, लड़की नहीं, नहीं नहीं लड़की नहीं, चले जाते हैं। तो जो सखी है ना घर पे फ्रेंड्स, वो राधा रानी की माता को बोलते हैं, अरे माता जी लगता है बहुत पावरफुल ऋषि है ये, बहुत पावरफुल सेंटली पर्सनैलिटी है, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, इनकी कृपा से क्या नहीं होता है, हो सकता है इनकी कृपा से हमारी बेटी आँख खोलेगी, बोलेगी कुछ, पता नहीं संतों के पास कितना पावर होती है, भगवान की सेवा करते हैं ना वो, उनके अंदर बहुत शक्ति होती है, उनके कृपा से क्या नहीं हो सकता है। बाय दैट ब्लेसिंग व्हाट कैन नॉट हैपन, मिरेकल्स कैन हैपन, प्लीज कॉल हिम, डोंट टेल हिम लाइज, टेल हिम द ट्रूथ। तो तुरंत वो सखियों के बीच जाओ, बाबा को बुला के ले, सखियां भागती है, महाराज महाराज रुको रुको रुको, वो कन्या का जन्म हुआ है, आप आ जाओ हमारे घर में कन्या का जन्म हुआ है, हमको जरा संकोच था क्योंकि वो बोल नहीं रही है, देख नहीं रही है, तो आपको थोड़ा दुख हुआ था, इसलिए हम लोग आपको बताया नहीं, लेकिन है आप आइए। तो नारद मुनि भाग के आते हैं, बहुत खुश होकर आते हैं, अरे यस मेरा जीपीएस गलत नहीं है, सही है। तो आते हैं तो अंदर ले जाते हैं हमको सीधा अंदर, केडल में राधा रानी सो रही है, आंख बंद है, मुंह बंद है, सब बंद है, जस्ट नथिंग इज हैपनिंग। तो दंडवत पहले प्रणाम करते हैं, फ्लैट ओबेजेंसेस, और कहते हैं आप महाराज जी क्या कर रहे हैं, ये लड़की अंधी है, बचपन से इतनी सुंदर है, इतने कोमल अंग है उसके, इतने डेलिकेट बॉडी है उसकी, इतना तेज है, इतनी सुंदर आंखें हैं, लेकिन खोल नहीं रही है उसको, क्या करें उसके लिए। नारद मुनि कहते हैं चिंता मत करना, डोंट वरी, एक अच्छा फेस्टिवल करना जिसके लिए आप यू आर हेजिटेटिंग टू परफॉर्म फेस्टिवल ना, अभी करना उसको। अनि मैं आपको बता दिया आपको मैंने कि वो कृष्ण बलराम आए वहाँ पर, और जैसे ही स्पर्श किया कृष्ण भगवान ने तो राधा रानी ने आंखें खोली। एनीवेज तो ये बाद की बात है, लेकिन नारद मुनि ने सारा प्रोग्राम का प्लानिंग बना दिया, मतलब जाओ तैयारी को शुरू करो, उनको सबको भगा देने का था और अकेले मिलना था राधा रानी को। तो सब लोग जैसे ही सुना के दिया क्या क्या करना है, सब लोग तुरंत गए, बिजी तुरंत चले गए। तो राधा रानी अकेली हो गई, तो राधा रानी ने नारद मुनि को 16 ईयर ओल्ड फॉर्म का दर्शन दिया, अभी इतनी सी है, पल्ले में लेटी हुई है, लेकिन वहीं पर राधा रानी प्रकट हो गई, 16 साल की युवती प्रकट हो गई और दर्शन दिया। नारद मुनि वापस दंडवत प्रणाम किया और बेहोश हो गए, दर्शन प्राप्त करके पूरे बेहोश हो गए। तो राधा रानी की कृपा से वापस जग गए, फिर देखा तो फिर बेहोश हो गए, ऐसे कई बार हो गया, आंसू बह रहे प्रेम के, थैंक यू माय लॉर्ड, माय मिस्ट्रेस राधा रानी, थैंक यू वेरी मच। फिर बोलते हैं मेरी एक और इच्छा है, आपका आपके 8 फ्रेंड्स के साथ हमको दर्शन करना है, अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो राधा रानी कहते हैं तथास्तु, आप कुसुम सरोवर चले जाओ, वहां पर दर्शन होंगे आपको। तो नारद मुनि वहां से ना ऐसे रोलिंग ऑन द ग्राउंड, कभी उठ के नाच कर रहे हैं, कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी रोल हो रहे हैं, ऐसे करते करते वहां पहुंच गए। He didn't know when he reached there. He was so happy and blissful. Only rolling in the ground and dancing and shedding tears of love. वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँच गए तो वो कुसुम सरोवर में एक स्क्वायर है उसके स्क्वायर, हाँ तो ये एंड पे सदर्न एंड पे उसको दो सखियाँ मिली, वृंदा देवी और माधवी गोपी, उन्होंने उसको रिसीव किया और उनको उधर एंड में जल में स्नान कराया। जैसे ही स्नान कराया तो नारद मुनि गोपी बन गए, बिकम ब्यूटिफुल गोपी, इतनी सुंदर गोपी, नारदीय गोपी नाम रखा उनका। और वो दो सखियों ने मिलकर उस गोपी का श्रृंगार किया, उसको फूलों से सजाया, उसको दुपट्टा पहनाया, उसको माला पहनाई, उसको आईब्रोज बनाए, उसको सब कुछ करके गहने पहनवाए, और फिर उसको सजाने के बाद में उसके हाथ में चामर दिया और हाथ उसका सुंदर पकड़ के उसको बीच में लेके गए, कमल के बीच में, सारी पंखड़ियों को क्रॉस करते 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 बीच वॉल लोटस वहां पर पहुंच गए, जहां पर राधा और श्याम सुंदर जी विराजमान है और सब सखियां सेवा कर रही है, वहां जाके पहुंचा दिया और हाथ में चामर देके बोला अभी सेवा करो इनकी आप। तो सुंदर गोपी बने नारद मुनि ने तो चामर से सेवा किया।
चामर डुलाबो कबे हेरी बो मुख चंद्र,
ऐसा करेंगे बीच में टाइम मिलता है तो उनको देखना है, फिर ऐसा करेंगे फिर बीच में टाइम मिलता है फिर उनको देखना है। सेवा करना है और दर्शन करना है, सेवा करना है और दर्शन करना है। सब बहुत देर तक आनंद लिया उन्होंने, ठाकुर जी को आनंद दिया चामर सेवा करके। फिर वो दोनों गोपियां आई वापस, उनको हाथ पकड़ के फिर इधर लेके आए, इधर लेके फिर नहलाया तो वापस पुरुष शरीर प्राप्त हो गया। बीच में जब सेवा समाप्त हो गई तो राधा रानी ने कहा आप यहीं रहो और हमारी सेवा के विषय में किताब लिखो। तो नारद मुनि ने कहा तो उसको बहुत टाइम लगेगा लिखने के लिए, मुझे तो शाप है दक्ष मुनि दक्ष राजा का कि 3 दिन के ज्यादा एक जगह आप रह सकते नहीं हो। तो राधा रानी कहती है ये मेरा घर है और ये मेरे घर पे दक्ष राजा का शाप लागू नहीं होता है, आप चाहे जितना रह सकते हो यहाँ, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये दक्ष राजा का राज्य नहीं है, वो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पर बर्थ एंड डेथ होते रहता है, ये मेरा घर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यहाँ पर दक्ष राजा का शाप आपको अप्लीकेबल नहीं है, आप चाहे जितना रहो आराम से रहो और वो ग्रंथ लिखो। नारद मुनि नाचते नाचते गए वहां से पास में ही गए और उस वन में रहे, वो नारद वन नाम है उसका, वो 1 किलोमीटर दूर है वहां से, नारद कुंड भी वहां पर।
नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे,
ऐसे गीत गाते हुए उन्होंने वो नारद पंचारद सूत्र वहां पर लिखा है, कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए उसके ऊपर लिखा है। फिर वही नारद मुनि वहां पर एक बार गए उसी कुसुम वन में और एक अशोक ट्री के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। ध्यान में क्या देखा उन्होंने, बड़ी अद्भुत बात देखी उन्होंने, बड़ी अद्भुत बात देखी। ध्यान में देख रहे हैं कि सारे पेड़ जो वहां के है ना वृक्ष, वो सब गोपी बनकर सज सज कर रास्ते प्रवेश कर रहे हैं। यहां तक कि जिस पेड़ के नीचे बैठकर वो ध्यान कर रहे हैं वो पेड़ भी गोपी बनकर सज धज कर रास में एंट्री कर रहे हैं, रास लीला में डांस करने के लिए एंट्री कर रहे हैं। साधुत दर्शन हुआ उनको। इसका मतलब क्या है, कुसुम सरोवर में जितने भी पेड़ हैं वो सब गोपियां हैं, पेड़ के रूप में रहते हैं और रात में भेष बदल कर फिर रास में प्रवेश करते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीला है वहां पर। तो आप लोगों को इन्विटेशन है, प्लीज कम एंड रिलिश द पास्ट टाइम ऑफ द लॉर्ड, आप लोग आइए। वो मंदिर भी है भगवान के दया से, अभी हमारी भी वहां पर सेवा है, वहां पर एक मंदिर है राधा बन बिहारी मंदिर, उसके 250 साल पूरे हो गए अभी आज इस साल, दिस इज 250th ईयर एनिवर्सरी ऑफ द टेम्पल। और उस मंदिर में वो विग्रह है, राधा रानी सामने बैठी है, हाथ में आईना पकड़ा है, कृष्ण भगवान के एक हाथ में कंघी है, एक हाथ में राधा रानी के बाल है और पीछे से वो सेवा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान भी अपने भक्त की सेवा करते हैं। वो सेवा अभी आपको पता ही नहीं है कि आपको भगवान की सेवा करना है, भगवान भी अपने भक्त की सेवा करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। अर्जुन के ड्राइवर बने वो सुप्रीम लॉर्ड, इसका ड्राइवर अपने को बनना चाहिए। वो अर्जुन का ड्राइवर बने, पूरा 18 डेज ड्राइविंग किया फ्री ऑफ चार्ज, ऊपर से वो घोड़े को पानी भी दिया, मसाज भी किया, सब कुछ किया। जो ड्राइवर करता है ना, गाड़ी धोता है, साफ करता है, पेट्रोल भरता है, हवा भरता है, वैसे ही अर्जुन के रथ का सारा सेवा किया उन्होंने। और केवल सेवा ही नहीं किया, कितना बचाया उसको, कितने मरने वाला था वो, बहुत ट्रिक्स करके बचाया उसको, युद्ध में जिताया उसको उन्होंने, सेवक बन के जिताया। ऐसा नहीं कि हाँ मैं बैठूंगा समूह में, शाम को आके पूछना मुझे एडवाइस दूंगा आपको, अपनी रिपोर्ट देना शाम को आके फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना है अगले दिन, ऐसा नहीं। सेवक बन के आपको बताए, सारथी बनने का मतलब क्या होता है, अभी तो ड्राइवर बनना बहुत इजी है, एयर कंडीशन कार है, फर्स्ट क्लास, हाँ बाद में टेप रिकॉर्डर भी है, ग्लास रखने का जगह भी है, जूस पीते रहो, ड्राइविंग करते रहो, ऐसे ऐसे मुझे मोबाइल में कुछ पिक्चर देख रहे हो, कुछ सॉन्ग सुनो, दिस मेक इजी ड्राइविंग नाउडेज, इफ यू बिकम ड्राइवर आल्सो इज फाइन नाउडेज। लेकिन युद्ध में रथ के ऊपर सारथी बनना, चैरियटियर बनना मतलब क्या, इतना आवाज रहता है उस समय ना, यू कांट, अभी ड्राइवर को बोलेंगे आप लेफ्ट टर्न ले लो, फिर राइट ले लो, फिर यू टर्न मारो, राउंड अबाउट आप बोल सकते हो, वहां पर बोलने से आवाज नहीं आएगा, इतना सब वो चिल्ला रहे, हाथी चिल्ला रहा है, घोड़ा चिल्ला रहा है, वो योद्धा भी ललकार रहा है, सावधान करके गर्जना कर रहा है, सुना नहीं पड़ता है। उसमें अगर डायरेक्शन देना है ना तो केवल पैर से दे सकते हैं आप। तो जो रथी है, रथी मतलब द बॉस जो रथ पे खड़ा है, वो सारथी के पीठ पर लात मारेगा, राइट में मारेगा तो वो राइट टर्न लेगा, लेफ्ट में मारेगा तो लेफ्ट टर्न लेगा, बीच में मारेगा तो स्ट्रेट जाएगा। भगवान ने 18 दिन अर्जुन की लातों को बड़े प्रेम से स्वीकार किया है। There's no other way of telling सारथी to go right or left. 18 डेज कितनी बार बोला होगा, सनराइज टू सनसेट वॉर चलता था, कितनी बार यहाँ लो उधर लो, वो तो उसको पकड़ना है, इसको युद्ध करना है, इसको मारना है, कितना राइट लेफ्ट हाथी के बीच में घोड़े के बीच जाना है, कितनी बार उन्होंने राइट लेफ्ट सेंटर में किक दिया हुआ उन्हें। लेकिन भगवान ने गिना नहीं उसको, तुमने मुझे 1512 बार किक किया, ऐसा नहीं बोला। प्रेम है वो प्रेम, जैसे मम्मी को अपना बेटा जो है ना, अभी अपना गोपाल ने आपने कितनी बार लात मारा होगा, आपको कितनी बार मुंह में उल्टे किया होगा आपको खाते वक्त, आप क्या गिनते रहते हो क्या, सो मेनी ऑफेंसेस दिस चाइल्ड offended me so many times, I just can't tolerate. Let him become big. मैं सबका हिसाब लूंगी उसके साथ। ऐसा करते हैं क्या आप लोग, इतनी बार वो प्रेम से स्वीकार करते हैं उसको। वैसे भगवान ने अपने भक्त के लातों का प्रहार प्रेम से स्वीकार किया, ऊपर से गीता भी सुनाया उसको, वो बैठ गया था, वो बोला मेरे को कुछ करना ही नहीं, तो उधर भी काउंसलिंग दिया उसको, सुप्रीम साइकोथेरेपी भगवत गीता। वो कल का दिन है वो, टुमारो इज अ एकादशी फॉर दैट, मोक्षदा एकादशी, ऑन द टुमारोज डे श्री कृष्ण गेव द सुप्रीम साइकोथेरेपी टू अर्जुन। हाँ, जो खुद के लिए युद्ध कर रहा था पहले, वो बोला कि मैं भी खुद के लिए नहीं करूंगा, मैं आपके लिए करूंगा। करिष्ये वचनम तव, अभी इसके आगे जो आप बोलेगा मैं करूंगा, पहले बोल रहा मैं कुछ नहीं करूंगा। अभी वहां से लेके एंड तक पहुंचा है वो, क्या बोला एंड में, नष्ट मोहो स्मृतिर् लब्ध्वा करिष्ये वचनम तव, अभी मेरा मोह जो है ना इल्यूजन खत्म हो गया, अभी मैं जो आप बोलेंगे वो करूंगा, क्या करना है खाली बोलो। बोला उठो, माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे लिए युद्ध करो, अपना वाइफ के लिए उसका अपमान हो गया, रहे हो गया, अन्याय हो गया, इनजस्टिस हो गया, ये सब छोड़ दो, अब धर्म के लिए युद्ध करो। तो ठीक है, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज भगवद गीता, वो भी किया उन्होंने, क्या नहीं किया उसके लिए अर्जुन के लिए। तो भगवान भी, मैं ये कहना चाहता था कि भगवान भी अपने भक्त की सेवा करने में मग्न रहते हैं, हमेशा ढूंढते रहते हैं कि क्या सेवा करो अपने भक्त की, इसलिए उसको भक्तवत्सल कहते हैं। भक्तवत्सल मतलब क्या, एक माँ की तरह अपने भक्त पर प्रेम करते हैं, जैसे अपनी माँ अपने बालक पर प्रेम करते हैं, उसको वात्सल्य कहते हैं, मदरली अफेक्शन बोलते हैं उसको। तो भगवान जो अपने भक्त के लिए भक्तवत्सल बन कर रहते हैं हमेशा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वो तो भक्तवत्सल है, हम कब भगवतवत्सल बनेंगे, हम कभी उन पर प्रेम करेंगे, ये प्रश्न है बड़ा। तो ऐसी कहानी सुनने के बाद में हो सकता है थोड़ा सा स्पार्क पैदा हो सकता है भगवान के लिए, ऐसी हमारी आशा है और प्रार्थना भी है। तो आप लोगों को हम शुभकामना देते हैं कि आप चिंता मत करना, दुनिया में क्या हो रहा है वो अपने कर्मों के हिसाब से होते ही रहेगा, उसको आप टाल नहीं सकते हो, जो स्क्रिप्ट लिखा है ना स्क्रिप्ट, वैसे ही ड्रामा चलेगा, इसमें उस स्क्रिप्ट का डायलॉग चेंज नहीं कर सकते आप, ये डायलॉग बहुत हार्ड है इसको बोल नहीं सकता मैं, ऐसा नहीं, वो जो लिखा है, जो एक्टिंग आपको करना है, जो भी होने वाला है वो होते ही रहेगा, आपको उसको चेंज करने का कोई चांस नहीं है। इट्स ऑल लॉक्ड एंड सील्ड, पासवर्ड बंद करके रखा, उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकते आप। फिर क्या कर सकते हैं आप, अगर ये लेवल पे आपका सफरिंग चल रहा है लाइफ में, आपको इधर कुछ मैनिपुलेशन करना नहीं है, इसके ऊपर जाना है बस, राइज अबाव, फिर आपको इसका परिणाम कुछ नहीं होगा। जैसे 15 माले की बिल्डिंग में 8 फ्लोर पे आग लग रही है और आप बुझा नहीं पा रहे हो, तो क्या करना चाहिए, गो अबाव, देन यू विल बी फ्री फ्रॉम द फायर विच इज गोइंग। वो फायर चलता रहेगा, वो तो मटेरियल वर्ल्ड का नेचर है, भगवान ने बताया ना दुखालयम अशाश्वतम, आपको उसके अभाव जाना है, और अभाव जाने का एक ही तरीका है भगवान के साथ जुड़ना, कनेक्ट विद द लॉर्ड। और भगवान के साथ जुड़ना है तो होली नेम इज द ओनली वे, भगवान के नाम को पुकार के ही भगवान के साथ आप जोड़ सकते हो। हर धर्म में यही लिखा है, एसेंस वही है, आप मुझे पुकारो, मैं उपस्थित हूं आपके लिए, आई एम अवेलेबल, डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर, जस्ट कॉल मी, आई एम देयर. इतना बेकन कॉल पे हम लोग भी रहते नहीं किसके लिए, ना वाइफ के लिए रहते ना हस्बैंड के लिए रहते हैं. We also can't be on that beckon call. भगवान हमारे बेकन कॉल पे हमेशा तैयार रहते हैं. केवल पुकारने में हम लोग चुक जाते हैं. We are lazy in calling him only. We are lazy in seeking help. उन्होंने कहा कि seek and I will be there. Knock and I shall open the door. है ना, बोला है ना, कितनी बार बोला है, I am available. This is my number. Call me. I am available. Call ही नहीं करते हैं, इधर ही तड़पते रहते हैं. नंबर दिया है, वो दीवार पे लिखा है, कैलेंडर पे लिखा है, डायरी में लिखा है, हाथ में लिखा है, मोबाइल में लिखा है, सब लिखा है. कॉल तो करना चाहिए ना कम से कम. तो वो कॉल जो है ना वो इम्पोर्टेंट है. भगवान खड़े हैं सुनने के लिए, पुकारो आप खाली बस, तो जीवन धन्य आप. अगर आप उनको पुकारने में एक्सपर्ट हो गए तो कोई मिजरी आपको छुएगा नहीं लाइफ में, कोई भी तकलीफ कष्ट आपको छुएगा नहीं अगर आप उनको पुकारने में एक्सपर्ट हो. बालक क्या करता है, कुछ समझता नहीं उसको, क्या चल रहा है दुनिया में, कहाँ बॉडी किधर है, किधर से पानी निकल रहा है, किधर से क्या निकल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता उसको. पर उसका एक गुण होता है, बालक अपनी माता को 100% सरेंडर रहता है. द चाइल्ड इज 100% सरेंडर टू द मदर. और खाली एक ही उसको मालूम है फॉर्मूला, कुछ भी हो जाए दुनिया में अपने को रोना है बस, कुछ भी हो जाए रो देने का है पूरा. रो दिया एक बार, जो चाहिए सब कुछ फुलफिल हो जाता है. पॉटी किया तो साफ हो जाता है, भूख लगे तो खाना मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है कंप्लीटली. बीमार होगा तो दवा मिल जाती है, दर्द लगेगा तो गोद मिल जाती है प्रेम से, ब्रेस्ट मिल्क मिल जाता है, गोद में चुम्मा मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है. अटेंशन चाहिए तो अटेंशन मिल जाता है, वट एवर यू वॉन्ट. खाली रोना है, मतलब क्या, पुकारना है. रो के क्या करता है वो, मम्मी को पुकारता है बस. हम लोगों को प्रभुपाद जी हमेशा बताते थे भगवान का नाम कैसे पुकारना चाहिए. जैसे एक बालक माँ के लिए रोता है वैसे हमको भगवान को पुकारना चाहिए. लाइक द चाइल्ड क्राइज फॉर द मदर, वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड. हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे.
थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा
हरे कृष्णा.
टाइम बहुत हो चुका है, फिर भी कोई क्वेश्चन है क्या? One or two question.
Small question,
small question, please ask.
Prabhu, you very nicely described the Kusum Sarovar. So I had a little desire to understand, like Golok Vrindavan is the topmost planet as we know, heard from Acharyas and from the scriptures. So is Kusum Sarovar is the topmost place within that Golok Vrindavan?
Kusum Sarovar is not topmost place. Kusum Sarovar is in the topmost place.
Is in the topmost place.
कुसुम सरोवर गोवर्धन के एरिया में आता है. श्री वृंदावन धाम में, श्री वृंदावन धाम में जमुना नदी है और गोवर्धन भी है, और गोवर्धन में बहुत सारे स्थान हैं, उसमें से एक स्थान कुसुम सरोवर. अभी हमने खाली आपको एक जगह का इन्फॉर्मेशन दिया है कि बहुत सारे जगह है वहाँ पर, और हर एक जगह पर बहुत सारे ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स हैं. तो भगवान की इच्छा रही तो एक एक करके बताएंगे आपको, और अगर एक एक करके बताने का आपको मौका नहीं मिलेगा तो इंटरनेट में सब कुछ मौजूद है, ताकि डाउनलोड कीजिए और सब सुनिए बैठ के आराम से एवरीथिंग. और कोई प्रश्न है? एनीबडी एल्स? समृद्ध प्रभु.
जब हम धाम के बारे में सुनते हैं, जैसे अभी अतिशयोक्ति नहीं, लेकिन मैं ऐसा फील कर रहा था कि मुझे वही वन बिहारी जी का छवि याद आ रहा था, दर्शन याद आ रहा था. तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम लोग इसको सुन रहे हैं और बड़े ही प्रेम से उसको समझने की कोशिश करते हैं तो सब कुछ मतलब ऐसा बिल्कुल लगता है, लेकिन कई बार के बाद से लेक्चर समझो खत्म हो गया या फिर हम दूसरे अपने काम में लिप्त हो गए तो उसमें वापस से वो आनंद जो होता है वो ऐसा लगता है कि वो चला गया वापस कहीं से. तो कैसे हमेशा मतलब इस तरह से
सबने सुना प्रश्न इनका सबसे पहली बात ये है कि अगर आप ये कथा सुन रहे हैं तो आपको जैसे वो गोपी येलो फ्लावर चुन रही है तो कैसे चुन रही है वैसे आपको सुनना चाहिए. विद फुल अटेंशन, 100% अटेंशन विद फुल हार्ट, फिर उस पर आपको चिंतन करना है, यू हैव टू मेडिटेट, कीप ऑन रिमाइंडिंग योरसेल्फ। इसके लिए ना एक बेस्ट एग्जांपल है बोली, आपको तुरंत समझ में आएगा। जब कोई यंग लड़की एक यंग बॉय के साथ में प्रेम करती है, शी फॉल्स इन लव विद हिम, तो दिन रात क्या सोचती हो? उसको बोलना पड़ता है क्या? सोचो उसके बारे में, सोचो 10 घंटा सोचा, 14 घंटा बाकी है, अभी क्या सोचती नहीं, तुम क्या करती हो? 24 आवर्स नॉन स्टॉप मेडिटेशन है ना। जब वैसा हमारा भगवान का हो जाएगा ना, तो कथा चल रही है या समाप्त हो गई आपको पता नहीं पड़ेगा, आप उसी में रहोगे। बाय द वे कथा चल रही है, अच्छी बात है, उन्हीं की बात हो रही है तो अच्छा लग रहा है, कथा नहीं भी चल रही है तो भी अच्छी बात है, मन में तो वही चल रहा है ना बैकग्राउंड म्यूजिक, उसी को भक्ति कहते हैं। हम सब लोग है ना 24/7 कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं। देखो आप अपने आप को, माइंड को जरा ध्यान से देखो, समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर माइंड कॉन्स्टेंटली, माइंड इज नेवर एम्प्टी, बस वो बदलते हुए विषयों को एक विषय बनाना है, वो है भगवान, बाकी सारे विषयों को छोड़ के एक विषय को चलाना है, एक ही टेप चलाना है, बार बार चेंज नहीं करना, सर्फिंग नहीं करना, बार बार चेंज नहीं करना। हम लोग वही करते रहते हैं, मंकी कैसे अभी एक ब्रांच पे बैठा है, दूसरी ब्रांच पे जंप मार रहे हैं, फिर वहां से दूसरी ब्रांच पे जा रहा है, अभी एक फल खा रहा है, आधा खाया छोड़ दिया, दूसरे फल के पीछे भाग रहा है, ऐसे इज मंकी बिजनेस, माइंड इज लाइक मंकी। तो हमको मंकी बिजनेस छोड़ के भगवान के विषय में चिंतन करना है, और जब भी कथा चलती है तो बड़े दिलो जान से सुनना है उसको, तो मन में होता नहीं है अरे वो शेयर मार्केट का क्या होगा, कल ही मेरा मैच हो रहा है, उसका कितना भी हो गया, डार्क मार्केट डाउन हो गया कि ऊपर हो गया, गोल्ड का रेट क्या हो गया, कल इतना था अभी कैसा हो गया, वो चलता रहेगा तो फिर कैसे मिलेगा आपको आनंद? फिर कथा समाप्त हुई, खत्म, टेम्पररी वो इस तरह का चिंगार स्पार्क जैसा हो जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिंग अ फायर इन द हार्ट, फायर ऑफ डिवोशन, रिमेन बर्निंग इन द फायर ऑफ डिवोशन, फिर नो लॉन्गर विल बी स्पार्क, sparks will come out of you and create fires in others, but you be the fire. So yahi uska answer hai. Ye kaisa hai na, uske liye taste paida karna hoga. Abhi taste duniya ki cheez ka hai na, uske jagah par bhagwan ka taste aana padega. Bhagwan ka taste aayega to apne aap fire paida ho jayega, aur jo bhi aapke paas mein aayega usko fire ki heat lagegi, bachega nahi wo. और कोई प्रश्न है किसी का?
यस,
एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चन, यस,
लाइक वी आर एंगेज्ड इन अ मटेरियल लाइक आवर जॉब एंड एवरीथिंग, सो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव टू रिमेन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस लेदर सबकॉन्शियस माइंड और व्हाटएवर 24 आवर, करेक्ट? सो नाउ व्हाइल डूइंग द मटेरियल आवर जॉब डे टू डे, हाउ कैन वी यू नो ट्राई टू रिमेंबर कृष्णा, लाइक इज देयर एनी,
डू इट फॉर कृष्णा, व्हाटएवर यू आर डूइंग, डू इट फॉर कृष्णा। वैसे अर्जुन जैसे युद्ध करने जा रहा था, लेकिन उसका खुद का एजेंडा था कि मेरे वाइफ का अपमान किया गया, मुझे वनवास भेजा गया, वी आर डिप्राइड ऑफ ऑल द फॉर्च्यून्स एंड सो मेनी थिंग्स, खुद का एजेंडा बहुत था, बर्निंग एजेंडा था। भगवान ने क्या कहा? सब छोड़ दो अपना एजेंडा, बार बार मुझे अपनी वाइफ के बाल का रिमाइंडर मत दो, हाँ बार बार मेरे वाइफ को ऐसा किया, वाइफ ने बाल छोड़ के रखे हुए हैं, तब तक बाल नहीं बांधेंगे जब तक वो दुशासन के खून से बाल नहीं धोएगी, ऐसा वैसा ए टू जे सब बातें कर रहे हैं बार बार, डोंट टॉक अबाउट अगेन एंड अगेन, धर्म के सामने वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार खुद का एजेंडा सामने लाना, राइज अबव ऑल दिस थिंग्स अर्जुन, डू इट फॉर मी, लेकिन बाय डूइंग इट फॉर हिम बाकी सारे एजेंडे पूरे हो गए ना उसके, हो गए कि नहीं अपने आप? वो अगर खुद के लिए लड़ता तो खाली उसका एजेंडा पूरा होता, लेकिन धर्म के लड़ा तो वर्ल्ड भी शांत हो गया, वर्ल्ड भी राज्य धर्म का राज्य आ गया, और खुद के भी सारे एजेंडा सारे प्रतिज्ञा सारे पूर्ण हो गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिवोशन, कि आप भगवान के लिए कुछ करने जाओगे आपके भी सारे एजेंडा पूरे हो जाएंगे, लेकिन आप जो भी कुछ कर रहे हो अपना ड्यूटी वो आपके लिए मत करो, उनके लिए करो, डू इट एज अ सर्विस एंड सैक्रीफाइस फॉर द लॉर्ड। परिवार को संभाल रहे हो, नौकरी कर रहे हो, दिल से भगवान के लिए सब काम करो, और जो भी हुआ हो एक्सेप्ट करो उसको, दुख हुआ तो भी एक्सेप्ट करो, सुख हुआ तो एक्सेप्ट करो, लेकिन करो उनके लिए। अभी हम अपने लिए कर रहे हैं इसलिए उनको भूल जाते हैं, जब अपने लिए करने का छोड़ के उनके लिए करना लगते हो ना, तो उसमें यश भी मिलता है और आपका भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान ने क्या बोला, एक लाइन बोला बीच में गीता में, Mam anusmara yudhya cha. You fight in the war, but fight remembering me and for me. So you fight your war remembering him and for him. Then you will be able to remember him all the time. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Thank you very much. Hari
Bol.
Kal Bhagwan ke Bhagavad Gita ka birthday hai. Kal sab log aaiye, hum log bhi aane wale hain. Aur isko recite karne wale hain. Aur beech mein bataenge aapko, shuruaat mein, beech mein, jab bhi time milega. Iska essence bataenge Bhagavad Gita ka. Bahut pavitra din hai kal. हम लोग उसको उपवास भी करेंगे कल, मोक्ष एकादशी का, और भगवान ने क्या बताया अर्जुन को उसका रहस्य जानने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण भगवान की
जय।
इस ग्रेस विश्वरूप प्रभु की
जय।
भगवान की
जय।